आगे सबक देखिए भाई, व इदा कानल मकदूफ मोहसनन जाजल इब्नि हिल काफिरी वल अब्दि अन युतालिब बिल हद खिलाफन लिजुफर रहिमहुल्लाह तआला हुवा यकूलुल कदफु यतनावलुहु मानन लिरुजूइल आरि इलैह वलैस तरीकुहुल इर्स इंदना فصار كما اذا كان متناولا له صوره ومعنا। भाई गुज़श्ता सबक के अंदर हमने बाबो हद शुर्ब शुरू किया था भाई, और मैंने आपको बतलाया था कि हुदूद कुल छह हैं और उनमें से दो हुदूद जो हैं इस बाब के अंदर बयान होंगी। एक है हद शुरबे खमर, शराब पीने की हद, और एक है हद सुकर मिन गैर इल खमर, शराब के अलावा कोई और नशावर मशरूब पिया और उसकी वजह से नशा हो गया तो उसकी वजह से जो हद वाजिब होती है वो भी यहीं पर बयान फरमाएंगे साहिबे हिदाया। इसीलिए उन्होंने बाब का नाम रखा बाबो हद शुरबी, कि ये बाब है नशावर मशरूब के पीने की हद के बयान में, चाहे वो शराब हो चाहे गैर शराब हो भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि शराब की वजह से हद वाजिब होगी और इसके अंदर नशा होना भी जरूरी नहीं है, अगर कोई शख्स शराब का एक कतरा भी पी लेगा तो उस पर हद वाजिब हो जाएगी। जबकि शराब के अलावा कोई और नशावर मशरूब पीता है तो उसके अंदर नशा होना जरूरी है, उससे नशा होगा तो हद वाजिब होगी, अगर नशा नहीं तो हद भी वाजिब नहीं है भाई। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि अगर किसी के मुंह से शराब की बू आ रही हो या कोई शख्स मदहोश हो तो सिर्फ इस वजह से उस पर हद जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि यह बू किसी और चीज की हो, और नीज यह हो सकता है कि यह जो मदहोश है कि किसी ने इसको जबरदस्ती शराब पिलाई हो या इसने मजबूरी की वजह से कुछ शराब पी ली हो भाई, यानी शदीद भूख की हालत में अपनी जान बचाने के लिए कुछ शराब इसने पी ली हो भाई। तो लिहाजा किसी के मुंह से शराब की बू आ रही है या वो नशे में मदहोश है तो सिर्फ इस बिना पर उस पर हद शुर्ब जारी नहीं की जाएगी, बल्कि जरूरी है कि इस पर कोई गवाह भी मौजूद हो, गवाहों ने इसको शराब पीते हुए देखा है या नशावर मशरूब पीते हुए देखा है और फिर उसके बाद इसको पकड़ा गया और काजी के पास ले आए और इस वक्त भी इसके मुंह से शराब की बू आ रही है या यह नशे में मदहोश है तो इस पर हद शुर्ब कायम की जाएगी भाई। और या वो इकरार कर लेता है तो और उस वक्त भी शराब की बू मौजूद हो फिर ही इसका इकरार मोतबर है, और अगर नशे की हालत में ये इकरार करता है तो वो इकरार मोतबर नहीं है, क्योंकि नशे के अंदर झूठ बोलने का भी इहतमाल है भाई। और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने बतलाया था कि हमारे अइम्मा का इस बात में तो इत्तेफाक है कि ये जो शुर्ब है अगर इसमें जमाना ज्यादा गुजर जाए तो हद साकित हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या जमाने का एतबार किया जाएगा या बू और नशे का एतबार किया जाएगा, तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर शराब की बू या नशे का एतबार किया जाएगा, अगर शराब की बू खत्म हो चुकी या नशा खत्म हो चुका तो बात पुरानी हो गई, लिहाजा इस पर हद जारी नहीं की जाएगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमा आते हैं कि यहां पर भी जमाने का एतबार किया जाएगा, बू तो किसी और चीज की भी हो सकती है लिहाजा यहां जमाने को देखा जाएगा, और एक महीने का वक्त गुजर जाए तो फिर हम कहेंगे कि बात पुरानी हो गई, हद साकित हो गई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह इस हद शुर्ब को कियास करते हैं हद जिना पर, हद जिना पर, और हद जिना के अंदर एक महीना गुजर जाए तो हद साकित हो जाती है, तो यहां पर भी एक महीना गुजर जाए तो हद साकित हो जाएगी भाई। और मैंने आपको बतलाया था कि यहां पर साहिब हिदाया ने शेखैन रहमहुमल्लाह के कौल को तरजीह दी है, लेकिन आम फुकाहा और आम उलमा जो हैं इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के कौल को यहां तरजीह देते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल इस सिलसिले में राजह है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि हद शुरबे खमर हो या हद सुकर मिन गैरिल खमर हो, दोनों की मिकदार 80 कोड़े हैं, और इस पर सहाबा का इजमा है, मालूम हुआ यह हद जो है इजमाए सहाबा से साबित है भाई। और इसके अंदर जो जर्ब लगाई जाएगी तो मशहूर रिवायत के मुताबिक इस मर्द की कमीज उतार ली जाएगी और फिर इसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। जबकि इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि नहीं, इसकी कमीज नहीं उतारी जाएगी भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि अगर कोई शख्स जो है शराब पीने का या कोई नशावर मशरूब पीने का इकरार कर लेता है और फिर बाद में रुजू कर लेता है तो उसका यह रुजू मोतबर है, इसलिए क्योंकि हद शुर्ब जो है यह खालिस अल्लाह का हक है। अगर यह बंदे का हक होता तो फिर इसका रुजू मोतबर ना होता, लेकिन चूंकि यह हद शुर्ब तो खालिस अल्लाह का हक है लिहाजा इसका रुजू मोतबर है भाई। और नीस शहादे शुर्ब के लिए दो गवाह काफी हैं भाई। जिना के मसले में चार गवाह चाहिए थे लेकिन हद शुर्ब के लिए दो गवाह काफी हैं, और अगर वो शख्स इकरार करता है तो एक ही मर्तबा का इकरार काफी है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हद शुर्ब के अंदर जब गवाह दो हैं तो लिहाजा इकरार भी दो मर्तबा अलग अलग मजलिसों में चाहिए। नीज इसी तरह वो हद सरीका के अंदर भी फरमाते हैं कि वहां भी जिस तरह गवाह दो हैं तो इकरार भी दो अलग अलग मजलिसों में चाहिए। वो इसको कियास करते हैं हद जिना पर, हद जिना के अंदर गवाह चार थे तो इकरार भी चार मर्तबा मोतबर था, तो यहां पर हद शुर्ब में और हद सरिका में गवाह दो हैं तो इकरार भी दो मर्तबा चाहिए भाई। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने उस नशे की मकदार और उस नशे की हद बयान की जिसकी वजह से किसी पर हद शुर्ब वाजिब होगी। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चूंकि यह हद का मामला है और हद का मामला बड़ा नाजुक होता है, पूरी कोशिश की जाती है कि किसी तरह इसको टाल दिया जाए, लिहाजा यहां पर नशे से मुराद इंतहा दर्जे का नशा होगा, यानी कोई शख्स नशे में इतना मदहोश हो जाए कि उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही और जमीन और आसमान के दरमियान इम्तियाज करना भी उसके लिए मुमकिन नहीं रहा, वो मर्द और औरत के दरमियान भी फर्क नहीं कर सकता। जब इतना नशा किसी को हो जाए तो फिर उस पर हद शुर्ब कायम की जाएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि जिस शख्स को इतना नशा हो जाए कि वो हज्यान बकने लगे, वो मिला जुला कलाम करने लगे, कभी वो अकल वालों की तरह बातें करता है और कभी वो बेअकली वाली बातें करता है, तो इस शख्स को मदहोश कहेंगे और उर्फ के अंदर इसी किस्म के आदमी को मदहोश कहा जाता है। लिहाजा किसी को इतना नशा हो जाए तो उस पर हद शुर्ब कायम की जाएगी भाई। तो यह तो हद शुर्ब के बारे में इख्तिलाफ था। इमाम साहिब के नजदीक इंतहा दर्जे का नशा मोतबर है और साहिबैन के नजदीक उर्फ के अंदर जिसको नशा कहते हैं वो नशा मोतबर है, लेकिन इस मशरूब के अंदर किस प्याले को हराम करार दिया जाएगा? तो मसलन फर्ज करें नबीस के दो प्याले पीने से नशा नहीं होता, अलबत्ता तीसरा प्याला पिया जाए तो वो कम दर्जे का नशा हो जाता है जो साहिबैन जिक्र फरमाते हैं कि वो आदमी मिला जुला कलाम करने लगे, और चौथा प्याला अगर इस मशरूब का पिया जाए तो फिर वो इंतहा दर्जे का नशा हो जाता है जो इमाम साहब बयान फरमा रहे हैं। तो अब इसके कौन से प्याले को हराम करार दिया जाएगा? साहिबैन के कौल को लिया जाए तो तीसरा प्याला ही हराम है क्योंकि इसकी वजह से नशा हो रहा है, और इमाम साहब का कौल लिया जाए तो फिर चौथा प्याला हराम होना चाहिए क्योंकि उससे इंतहा दर्जे का नशा हो रहा है। लेकिन साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि यहां पर इमाम साहब भी साहिबैन के साथ हैं और फरमाते हैं कि तीसरा प्याला पीना ही हराम है, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से नशा हो रहा है। तो जहां हराम और हलाल की बात थी तो वहां इमाम साहब ने एहतियात पर अमल करते हुए वो साहिबैन के कौल को इख्तियार किया, और जहां हद की बात थी तो वहां भी इमाम साहब ने एहतियात पर अमल करते हुए इंतहा दर्जे के नशे का एतबार किया भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर मदहोश आदमी जो है किसी चीज का इकरार कर ले तो अगर वो खालिस अल्लाह का हक है तो फिर उसका एतबार नहीं है। मसलन वो चोरी का इकरार करता है या वो जिना का इकरार करता है या वो शराब पीने का इकरार करता है तो हद शुर्ब حد زنا اور حد سرقہ یہ سب تو خالص اللہ کا حق ہے، لہذا اس سلسلے میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے نشے کے اندر اس اقرار کی وجہ سے اس پر حد زنا یا حد سرقہ یا حد شرب خمر ثابت نہیں ہوگی. لیکن اس کے بجائے اگر وہ کسی ایسی حد کا اقرار کرتا ہے جس میں بندے کا بھی حق ہے، جیسے حد قذف ہے، تو پھر اس کا یہ اقرار معتبر ہے بطور ڈانٹ کے اور بطور سزا کے کہ اس نے یہ نشہ کیوں کیا. تو چنانچہ نشے کے اندر اگر وہ قذف کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی پر زنا کا الزام لگایا تھا، تو یہ معتبر ہے اور اس کی وجہ سے اس کو حد قذف لگائی جائے گی. جس طرح نشے کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق واقع ہو جائے گی، یا نشے کے اندر کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرے تو یہ آزادی واقع ہو جائے گی بطور سزا کے. تو جس طرح مدہوش آدمی کے باقی تصرفات بطور سزا کے نافذ ہو جاتے ہیں، اسی طرح حد قذف بھی نافذ ہو جائے گی بھائی. اور پھر یہ بھی بتایا صاحب ہدایہ نے کہ نشے کی حالت میں اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کہتا ہے تو اس صورت میں اس کو مرتد قرار نہیں دیا جائے گا اور اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کیونکہ کفر جو ہے وہ اعتقادی چیز ہے، وہ اعتقاد کا نام ہے، اور یہ مدہوش آدمی اس کی تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو ہوش میں ہی نہیں ہے، لہذا یہاں اعتقاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اعتقاد کے لیے عقل ضروری ہے بھائی. اس کے بعد ہم نے باب حد القذف پڑھنا شروع کیا تھا. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگا دے اور پھر وہ جو مقذوف ہے جس پر الزام لگایا گیا تھا وہ حد قذف کا مطالبہ کرے، تو پھر اس قاذف پر حد قذف جاری کی جائے گی، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور نیز آئندہ زندگی بھر کے لیے اب اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی بھائی. اور اگر یہ تہمت لگانے والا غلام ہے تو پھر اس کی سزا 40 کوڑے ہیں بھائی. اور پھر صاحب ہدایہ نے آپ کو احسان القذف کی تفصیل بتلائی تھی کہ کسی محسن پر اگر کوئی الزام لگائے زنا کا، تو اس محسن سے مراد وہ شخص ہے جس میں 5 صفات پائی جائیں، وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور زنا سے پاک دامن ہو. تو یہ 5 شرطیں ہیں احسان القذف کے لیے. اور پھر صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کہتا ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ دراصل زنا کا الزام لگا رہا ہے اس کی ماں پر، تو اگر اس کی ماں محسنہ ہے تو پھر اس شخص کو حد لگائی جائے گی بھائی. اور اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا، اس کے باپ کا نام ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں، مثلا زید کا بیٹا ہے، ایک آدمی اسے کہتا ہے تو زید کا بیٹا نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ یہ بات اس نے غضب اور غصے کی حالت میں کہی ہے یا غیر غضب کی حالت میں یہ بات کہی ہے. تو اگر اس نے غضب کی حالت میں یہ بات کی ہے تو پھر معلوم ہوا وہ اس کو گالی دے رہا تھا، وہ اس کلام کے حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا تھا، لہذا اس صورت میں یہ زنا کا الزام ہے تو پھر حد لگائی جائے گی بھائی اس آدمی کو. اور اگر اس نے غضب کے علاوہ عام حالت کے اندر یہ بات اس نے کہی ہے اس بیٹے سے، تو معلوم ہوا وہ یہاں گالی نہیں دے رہا بلکہ اس کو ملامت کر رہا ہے کہ تجھ میں اپنے باپ جیسی اعلی صفات نہیں ہیں بھائی. اور صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی شخص پر زنا کا الزام لگایا جائے تو حد قذف کا مطالبہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے، کوئی اور اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ مقذوف کا انتقال ہو جائے تو حد قذف کے اندر وراثت بھی جاری نہیں ہوتی، لہذا کوئی اور اب حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا. البتہ اگر کسی مرے ہوئے شخص پر، کسی میت پر کسی نے زنا کا الزام لگایا اور وہ میت جو ہے محسن ہے، پاک دامن ہے، تو پھر اس میت کے اصول اور فروع جو ہیں وہ سب حد قذف کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان سب کا اس میت کے ساتھ جزیت والا تعلق ہے، یعنی پیدائش والا تعلق ہے، تو ان کو بھی عار لاحق ہوا، ان کے لیے بھی یہ عار اور شرم کی بات ہے. تو لہذا یہ جو شخص نے قذف کیا، توجہ ہے، یہ جو شخص نے قذف کیا، میت کا اس نے نام لیا، میت کو ذکر کیا اور اس پر زنا کا الزام لگایا، تو میت کو قذف ہے صورتن بھی اور معنن بھی. صورتن بھی میت کو قذف ہے کیونکہ اس نے میت کے بارے میں کہا ہے، اور معنن بھی میت کو قذف ہے کیونکہ میت کو عار لاحق ہوا. मैयत को आर लाहिक हुआ, तो जिस पर इल्जाम लगाया है उस पर सूरतन भी कजफ है और मानन भी कजफ है, जबकि उसके उसूल और फुरू जो हैं उनके लिए मानन कजफ है, सूरतन तो कजफ नहीं। उसूल और फुरू को तो उसने जिक्र नहीं किया जिना का इल्जाम लगाने वाले ने, जिना का इल्जाम लगाने वाले ने उसूल और फुरू को तो जिक्र नहीं किया, लिहाजा सूरतन तो उन पर कजफ नहीं है, उन पर जिना का इल्जाम नहीं, लेकिन मानन उन पर भी जिना का इल्जाम है, इसलिए क्योंकि ये बात उनके लिए भी आर का बाइस है। तो जिस शख्स पर इल्जाम लगाया जाता है उस पर सूरतन भी कजफ है और मानन भी कजफ है, और जबकि उसके उसूल और फुरू जो हैं उन पर सिर्फ मानन कजफ है भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि हद कजफ जो है हमारे यहां इसके अंदर वरासत जारी नहीं होती, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक हद कजफ के अंदर भी वरासत जारी होती है। लिहाजा एक आदमी पर जिना का इल्जाम लगाया गया और फिर उसका इंतकाल हुआ तो फिर उसके वारिस भी हद कजफ का मुतालबा कर सकते हैं, जबकि हमारे नजदीक उसके वारिस हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकते भाई। और नीज जैसे बेटे की औलाद हद कजफ का मुतालबा कर सकती है, इसी तरह बेटी की औलाद जो है वो भी हद कजफ का मुतालबा कर सकती है, और नीज इसी तरह जैसे औलाद जो है हद कजफ का मुतालबा कर सकती है, तो औलाद की मौजूदगी में औलाद की जो औलाद है वो भी हद कजफ का मुतालबा कर सकती है। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब औलाद खुद मौजूद है तो वही हद कजफ का मुतालबा कर सकती है, औलाद की औलाद जो है वो इस सूरत में हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वह इदा कानल मकदूफ मोहसनन जाज लिबनी हिल काफिरी वल अब्दी अयु तालिब बिल हद्दी खिलाफन लिजुफरा रहिमहुल्लाह। भाई आपको साहिब हिदायत ने बतलाया कि अगर मैयत पर जिना का इल्जाम लगाया जाए और वो मोहसन है तो उसके उसूल और फुरू दोनों जो हैं वो हद कजफ का मुतालबा कर सकते हैं। यहां तक कि हमारे नजदीक अगर मैयत का ऐसा बेटा है जो वरासत से महरूम हो रहा है, मैयत का ऐसा बेटा है जो वरासत से महरूम हो रहा है वो भी हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। मसलन मैयत का बेटा वरासत से महरूम होगा किस तरह कि मसलन उसी ने इस मैयत को कत्ल किया और आपने पढ़ा है वारिस अपने मूरिस को कत्ल कर दे तो फिर वो वारिस नहीं बनता, या इसी तरह वारिस और मूरिस का दीन अलग अलग हो, यानी दोनों में से एक मुसलमान है और दूसरा गैर मुस्लिम है, तो इस सूरत में भी वो शख्स उसका वारिस नहीं बनता। तो मसलन बाप मुसलमान था और बेटा काफिर है तो ये काफिर बेटा अपने मुसलमान बाप का वारिस नहीं बन सकता, और इसी तरह अगर बेटा मसलन गुलाम है तो फिर वो भी वारिस नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि गुलाम तो किसी चीज का मालिक नहीं होता, उस गुलाम को देना तो इसी तरह है जैसे गोया उसके मालिक को दिया जा रहा है भाई। बात समझ में आ गई। तो सूरत मसला यह है, एक शख्स ने एक मैयत पर जिना की तोहमत लगाई और वो मैयत मोहसन है पाकदामन है और उसका एक काफिर बेटा है या उसका एक गुलाम बेटा है, तो क्या यह काफिर बेटा और गुलाम बेटा जो वारिस नहीं बन सकते महरूम है वरासत से, क्या ये हद कजफ का मुतालबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमारे नजदीक ये भी हद कजफ का मुतालबा कर सकते हैं। तो कहते हैं वह इदा कान अल मकदूफू मोहसनन, और जब वो शख्स जिस पर जिना की तोहमत लगाई गई है वो मोहसन था, यानी वो मैयत है और मोहसन है, तो जाज अल इब्नि हिल काफिरी वल अब्दी, तो उसके काफिर और गुलाम बेटे के लिए जायज है अन युतालिबा बिल हद, के वो हद का मुतालबा करे। भाई इबारत देखिए, जाज अल इब्नि हिल काफिरी वल अब्दी, लिबनी ही, ये इबनी ही है मौसूफ, मुजाफ मुजाफिले मिलकर मौसूफ, और अल काफिर यह है उसकी सिफर, और वल अब्दी ये अल अब्द का आतफ अल काफिर पर है, तो यह भी सिफत है उसी इबनी ही की कि उसका बेटा काफिर हो और गुलाम हो, यानी चाहे दोनों हो, काफिर भी है और गुलाम भी है, या सिर्फ काफिर है या सिर्फ गुलाम है, यानी वरासत से महरूम हो रहा है, फिर भी वो हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। तो कहते हैं जाज अल इब्न हिल काफिरी वल अब्दी, तो उस मैयत के काफिर और गुलाम बेटे के लिए जायज है अन युतालिबा बिल हद्दी, के वो हद का मुतालबा करे खिलाफन लि जुफर रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के। हुआ यकूल, इमाम जुफर फरमाते हैं अल कसु यतनावलुहु मानन लिरुजूइल आरी इलैह। भाई याद रखो, इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये काफिर बेटा ये काफिर बेटा या ये गुलाम बेटा ये इस मैयत के हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता भाई। वजह यह है, इमाम जुफर हमला की दलील सुनो। इमाम जुफर हमला फरमाते हैं कि अगर ये जिना का इल्जाम लगाने वाला अगर इस बेटे पर इल्जाम लगाता बराह रास्त भाई, इस बेटे पर जिना का इल्जाम लगाता, तो फिर इस सूरत में वो तोहमत लगाने वाले पर हद कजफ नहीं आनी थी, क्योंकि बेटा काफिर है या गुलाम है। जब काफिर या गुलाम है तो ये मोहसन नहीं, और गैर मोहसन पर अगर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो उस पर हद कजफ जारी नहीं की जाती। तो इमाम जुफर रहमला फरमाते हैं अगर ये जिना का इल्जाम लगाने वाला इस काफिर या गुलाम बेटे पर जिना का इल्जाम लगाता, और उस सूरत में ये इल्जाम बेटे पर था सूरतन भी और मानन भी। उस सूरत में भाई जिस शख्स पर कोई इल्जाम लगा रहा है तो सूरतन भी उसी पर इल्जाम है, तवज्जो है, उसी को जिक्र कर रहा है कि तूने जिना किया है, और माना के एतबार से भी उसी पर इल्जाम है क्योंकि ये बात उसी के लिए बाइस आर है भाई। तवज्जो है, जब कोई शख्स किसी पर जिना का इल्जाम लगाता है तो सूरतन भी उस पर जिना का इल्जाम है क्योंकि उसी को वो जिक्र कर रहा है, और मानन भी उस पर जिना का इल्जाम है क्योंकि इसकी वजह से उसको आर लाहिक होगा। तो यहां पर अगर इस मैयत के काफिर बेटे या गुलाम बेटे पर अगर कोई बराह रास्त जिना का इल्जाम लगाता तो देखो इस सूरत में सूरतन भी इस बेटे पर कजफ है और मानन भी कजफ है, और फिर भी हद वाजिब नहीं हो रही। सूरतन भी कजफ और मानन भी कजफ, लेकिन फिर भी हद वाजिब नहीं हो रही क्योंकि बेटा मोहसन नहीं है। तो जब बेटे पर सूरतन और मानन दोनों एतबार से कजफ हो फिर वह हद वाजिब नहीं होती। तो जब मैयत बाप पर जब इल्जाम लगाया गया जिना का तो बेटे पर इल्जाम हुआ सिर्फ मानन, तो इस सूरत में बेटे पर सिर्फ मानन इल्जाम है, असल इल्जाम तो वो मरे हुए बाप पर है। मरे हुए बाप पर सूरतन भी इल्जाम है और मानन भी, और बेटे पर बेटे को सिर्फ आर लाहिक हुआ है, बेटे को तो उसने जिक्र नहीं किया जिना के इल्जाम में, तो बेटे पर सिर्फ मानन जो है वो कजफ है। तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि अगर बेटे पर वो बराह रास्त जिना का इल्जाम लगाता यानी सूरतन भी कजफ होता बेटे पर मानन भी कजफ होता तो फिर भी इस काजिफ पर हद नहीं आनी थी। तो जब इसके मरे हुए बाप पर उसने जिना का इल्जाम लगाया है तो इसमें तो बेटे पर सिर्फ मानन कजफ है, सूरतन कजफ नहीं है, तो लिहाजा इस सूरत में तो बतरीके औला इस शख्स पर हद नहीं आएगी भाई। दलील समझ में आई? तो कहते हैं खिलाफन लिजुफरा रहमहुल्लाह बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के हुआ यकूल, वो फरमाते हैं अलकज़्फ यतनावलुहु मानन, कि ये इल्जाम जो है ये बेटे को माना के एतबार से शामिल है, यानी माना के एतबार से बेटे पर इल्जाम है, सूरत के एतबार से यहां बेटे पर इल्जाम नहीं बल्कि सूरत के एतबार से तो उस मरे हुए बाप पर इल्जाम लगा रहा है जिना का। तो कहते हैं अलकज़्फ यतनावलुहु मानन, कि ये जिना का जो इल्जाम है ये बेटे को माना के एतबार से शामिल है, लिरुजूइल आर इलैही, इसलिए क्योंकि ये आर जो है बेटे की तरफ लौटता है, ये आर बेटे की तरफ लौटता है क्योंकि दोनों में पैदाइश का रिश्ता है भाई, तो ये आर जो है बेटे की तरफ लौट रहा है, लिहाजा ये माना के एतबार से बेटे पर भी इल्जाम है। वलैसा तरीकुहुल इरसा इंदना, और हद कजफ जो है इसका तरीका वरासत नहीं है हमारे नजदीक, इसका तरीका हमारे नजदीक वरासत नहीं है, यानी अगर वरासत होती तो फिर हम कह सकते थे सूरतन भी बेटे पर इल्जाम है मानन भी इल्जाम है, क्योंकि बाप पर सूरतन भी इल्जाम था और मानन भी, और बेटा उसी का वारिस बन गया, तो गोया बेटे पर भी सूरतन भी इल्जाम होता और मानन भी, लेकिन यहां तो वरासत जारी होती नहीं, वरासत जारी नहीं होती, तो सूरतन इल्जाम सिर्फ बाप पर ही है, वो बेटे की तरह मुंतकिल ही नहीं हुआ, तो बेटे पर सिर्फ मानन इल्जाम है, तो मानन इल्जाम की वजह से हद नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो बेटे पर सूरतन भी इल्जाम लगाता और मानन भी इल्जाम लगाता तो फिर भी हद ने नहीं आना था, तो सिर्फ मानन इल्जाम होने की सूरत में तो बतरीके औला वो इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ नहीं आएगी। दलील समझ में आ रही है? तो कहते हैं वलैसा तारीकुहुल इरसा इंदाना, और इस हद कजफ का तरीका वरासत नहीं है हमारे नजदीक। फसारा कमा इदा कान मुतनाविलन लहू सूरतं व मानन, तो ये इसी तरह हो गया कि जैसे ये इल्जाम शामिल है बेटे को सूरतन भी और मानन भी। तो ये इसी तरह हो गया जैसे इल्जाम बेटे को शामिल हो सूरतन भी और मानन भी, और सूरतन और मानन में तो काजिफ पर हद नहीं आती थी, तो लिहाजा सिर्फ मानन की सूरत में भी काजिफ पर हद नहीं आएगी। वलाना, अब हमारी दलील आ गई। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहू अय्यरहू बिकज़्फी मुहसनिन फयाखुदुहू बिलहद्दी। भाई देखिए, हमारे नजदीक इस शख्स ने उस मैयत पर जिना का इल्जाम लगाया है जो मुहसन है। जब मुहसन है तो गोया ये कामिल दर्जे का आर दिलाया है इसने। भाई देखो, जब किसी पर जिना का इल्जाम लगाया जाता है तो शरीयत ने उसे हद कजफ का हक दिया है। क्यों? क्योंकि ये जिना का इल्जाम उस पाकदामन आदमी के लिए आर का बाइस है, शर्म का बाइस है, ये उसके लिए ताने का बाइस है भाई। तो लिहाजा शरीयत ने मुहसन होने की कैद इसलिए लगाई है ताकि ये जो जिना का इल्जाम लगाया है ये कामिल तौर पर आर दिलाने वाली बात हो जी। ये कामिल तौर पर आर दिलाने वाली बात हो। भाई अगर उस आदमी के अंदर ये मुहसन होने वाली सिफात में से कोई सिफत कम है, मसलन वो गुलाम है जी। और गुलाम पर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो ये बात गुलाम के लिए भी बाईस आर है लेकिन कामिल तौर पर बाईस आर नहीं है। या इसी तरह एक शख्स काफिर है, उस पर कोई जिना का इल्जाम लगाए तो ये बात उसके लिए भी बाईस आर है लेकिन कामिल आर का बाईस नहीं है। कामिल आर का बाईस उस आदमी के लिए होगी जिसमें एहसान वाली सिफात मौजूद हो, यानी वो आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और जिना से पाकदामन हो। जब ये सारी सिफात उसमें मौजूद हैं, अब उस पर कोई जिना का इल्जाम लगाता है तो ये इसने कामिल दर्जे का आर दिलाया है, यानी ये बात उस आदमी के लिए बहुत ज्यादा आर का बाइस है भाई। कामिल दर्जे का आर है ये उसके लिए। जब ये कामिल दर्जे का आर हुआ तो देखो हमारी दलील चल रही है। हम कहते हैं बेटा बेशक काफिर है या गुलाम है, इसको खुद कोई इल्जाम लगाएगा तो वो कामिल दर्जे का आर नहीं, लेकिन यहां पर इल्जाम लगाया है उसके बाप पर और बाप मर चुका है और वो मुहसन था और मुहसन पर जब जिना का इल्जाम लगाया जाए तो वो कामिल दर्जे का आर है और यही कामिल दर्जे का आर अब बेटे की तरफ भी लौट रहा है। खुद बेटे पर इल्जाम लगाते तो कामिल दर्जे का आर ना होता लेकिन यहां पर मोहसन बाप पर इल्जाम लगाया है तो ये कामिल दर्जे का आर है और यही आर लौट रहा है बेटे की तरफ, उसके लिए भी ये आर का बाइस है। तो वही कामिल दर्जे का आर किसकी तरफ आ गया? बेटे की तरफ। लिहाजा वो हद कजफ का मुतालबा कर सकता है। बात समझ में आ गई। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहू अय्यरहू बिकज़्फी मुहसनिन, कि इस तोहमत लगाने वाले ने बेटे को आर दिलाया है बिकज़्फी मुहसनिन, एक पाकदामन शख्स पर जिना का इल्जाम लगाकर। एक पाकदामन शख्स पर जिना का इल्जाम लगाकर इसने बेटे को आर दिलाया है। फयाखुदुहू बिलहद्दी, तो बेटा उसका मुआखजा कर सकता है हद के जरिए। वहादा लिअन्न अल-इहसान फिल लदी युनसबु इला ज़िना शर्तुन, कहते हैं वहाजा, और ये इसलिए है कि बेटा जो है हद का मुतालबा कर सकता है। अब उसकी तफसील बयान करेंगे जो मैंने बतला दिया कि बाप पर जिना का इल्जाम है तो ये कामिल दर्जे का आर है और यही आर फिर किसकी तरफ लौटा है? बेटे की तरफ। तो कहते हैं वहादा, और ये इसलिए, लिअन्न अल-इहसान फिल लदी युनसबु इला ज़िना शर्तुन, इसलिए क्योंकि वो शख्स जिसकी जिना की तरफ निस्बत की गई है उसके अंदर एहसान शर्त है। जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया है उसका मुहसन होना शर्त है हद के लिए। लियका तअय्यिरन अलल कमाली, ताकि ये इल्जाम कामिल तौर पर आर दिलाने वाला होकर वाके हो, ताकि ये इल्जाम कामिल तौर पर आर दिलाने वाला बने। जब एक शख्स मुहसन होगा उस पर कोई जिना का इल्जाम लगाएगा तो यह कामिल दर्जे का आर है, और अगर उसमें एहसान वाली सिफात नहीं तो फिर आर तो है लेकिन कामिल दर्जे का आर नहीं। तो कहते हैं, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वहादा लि अन अल एहसान फिल्लदी युनसबु इला जिना शर्तुन, और ये इसलिए क्योंकि वो शख्स जिसकी जिना की तरफ निस्बत की गई है उसका मोहसन होना शर्त है हद के लिए। लियका तायीरन अलल कमाली, ताकि ये जो इल्जाम है ये कामिल तरीके पर तायीर बन जाए, कामिल तरीके पर आर दिलाना बन जाए। सुम्मा यर्जिउ हादा तायीरुल कामिलु इला वलदिही, फिर यही कामिल आर दिलाना जो है ये लौटता है उसकी औलाद की तरफ, और तो लिहाजा औलाद मुतालबा कर सकती है। वल कुफ्रु ला युनाफी अहलियत अल इस्तेहकाकी, और कुफर जो है वो अहलियत इस्तेहकाक के मुनाफी नहीं है। इस्तेहकाक से मुराद है इस्तेहकाक खुसूमत, बेटा काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकता है। यह आर असल में था मैयत के लिए और कामिल दर्जे का आर था, और यही आर लौट आया किसकी तरफ, बेटे की तरफ, तो बेटा काजी से जाकर मुतालबा कर सकता है, यानी खुसूमत कर सकता है, मुकदमा कर सकता है। और कोई काफिर हो तो काफिर जो है वो भी खुसूमत का मुस्तहिक होता है, वो भी काजी के पास किसी भी मामले के अंदर मुकदमा ले जा सकता है। तो कुफर या गुलामी ये खुसूमत के इस्तेहकाक से मानेअ नहीं है भाई। तो कहते हैं वल कुफ्रु ला युनाफी अहलियत अल इस्तेहकाकी, और कुफर जो है खुसूमत का मुस्तहिक होने की अहलियत के मुनाफी नहीं है। कुफर की वजह से कोई खुसूमत का मुस्तहिक ना रहे ऐसा नहीं है। तो कहते हैं वल कुफ्रु ला युनाफी अहलियत अल इस्तेहकाकी, और कुफर जो है वो अहलियत इस्तेहकाक के मुनाफी नहीं है, यानी खुसूमत के इस्तेहकाक की अहलियत के मुनाफी नहीं है कुफर। बेखिलाफ इमा इदा तनावल अल कस्फ नफ्सहू, बेखिलाफ इसके कि जब वो इल्जाम इस बेटे की जात को शामिल हो, अगर बेटे पर बराह रास्त इल्जाम लगाएंगे तो वो कामिल दर्जे की तायीर नहीं, क्योंकि बेटा खुद जो है वो मोहसन नहीं है। तो कहते हैं बेखिलाफ इमा इदा तनावल अल कस्फ नफ्सहू, बेखिलाफ इसके कि कज़फ जो है खुद बेटे को शामिल हो। लिअन्नहु लम यूजदि तायीरु अलल कमाली, इसलिए क्योंकि यहां कामिल तौर पर आर दिलाना नहीं पाया गया। लिफ़क़दिल इहसान फिल मनसूबी इला ज़िना, इसलिए क्योंकि एहसान मौजूद नहीं है उस बेटे के अंदर जिसकी निस्बत की गई है ज़िना की तरफ। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वलैस लिल अब्द अन युतालिब मौलाहु बिकज़्फ उम्मिहिल हुर्रति वला लिल इब्न अन युतालिब अबाहु बिकज़्फ उम्मिहिल हुर्रतिल मुस्लिमा। सूरत मसला यह कि आका ने अपने गुलाम को पुकारा ऐ जानिया के बेटे, यानी उसकी मां पर जानिया होने का इल्जाम लगा दिया आका ने, और हाल यह है कि इसकी मां जो है वो मर चुकी है और वो मोहसना है। तो क्या ये अब अपने आका पर हद कजफ का मुतालबा कर सकता है? कहते नहीं, गुलाम अपने आका पर हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता। या इसी तरह अगर बाप ने अपने बेटे को इस तरह पुकारा कि ऐ जानिया के बेटे, और इस बेटे की जो मां है उसका इंतकाल हो चुका है और वो मोहसना थी भाई, तो क्या बेटा अपने बाप पर हद कजफ का मुतालबा कर सकता है? कहते हैं नहीं, बेटा अपने बाप के खिलाफ हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता। कहते हैं वलैसा लिल अब्दि अन युतालिब मौलाहु बिकज़्फ उम्मिहिल हुर्रति, और गुलाम का यह हक नहीं है कि वह मुतालबा करे अपने आका पर बिकज़्फ उम्मिहिल हुर्रति, अपनी आजाद मां की तोहमत का। गुलाम का यह हक नहीं है कि वह अपनी आजाद मां की तोहमत का मुतालबा करे आका पर। वला लिली बनी, और बेटे का भी यह हक नहीं है अन युतालिबा अबाहू कि वह अपने बाप से मुतालबा करे बिकज़्फ उम्मिहिल हुर्रतिल मुस्लिमती, अपनी आजाद मुसलमान मां की तोहमत का। लिअन्न अल मौला ला युआक़बु बिसबबि अब्दिही, इसलिए क्योंकि आका जो होता है ला युआक़बु बिसबबि अब्दिही, उसको सजा नहीं दी जा सकती उसके गुलाम की वजह से। आका को अपने गुलाम की वजह से सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए क्योंकि गुलाम का जो हक है वो दरअसल आका का हक है। बात समझ में आ गई। गुलाम का जो हक है वो आका का हक है, तो गुलाम के हक की वजह से आका को सजा देना इसी तरह है जैसे आका को अपने ही हक में सजा दी जा रही है, और अपने ही हक में तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल मौला ला युआकबु बिसबबि अब्दिही, इसलिए क्योंकि आका जो है उसको सजा नहीं दी जा सकती अपने गुलाम की वजह से। वकदल अब बिसबबि इब्निही, और इसी तरह बाप को बेटे की वजह से सजा नहीं दी जा सकती। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तो उफ कहने से भी मना किया गया है। मालूम हुआ बेटे के लिए बाप को तकलीफ देना किसी सूरत भी जायज नहीं, और अगर बेटे की वजह से बाप को सजा दी जाए तो ये तो देखो बेटा सबब बन रहा है बाप को तकलीफ देने का, लिहाजा इसलिए बेटा भी बाप से हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता अपनी मोहसना मां की वजह से। तो कहते हैं वकदल अब उबिसा बबीबनी ही, और इसी तरह बाप को सजा नहीं दी जा सकती अपने बेटे की वजह से। वलिहादा ला युकादुल वालिदु बिवलदिही वलसय्यदु बिअब्दिही, और इसी वजह से ला युकादुल वालिदु बिवलदिही, किसास नहीं लिया जा सकता वालिद से बिवलदिही अपनी औलाद की वजह से। वलसय्यदु, और ना आका से किसास लिया जा सकता है बिअब्दिही उसके गुलाम की वजह से। याद रखो यह हदीस है भाई, साहिब हिदाय ने यहां सराहत नहीं फरमाई कि यह हदीस है, आगे दूसरे मकाम पर वो इसको जिक्र फरमाते हैं। तो हदीस में आता है कि औलाद की वजह से वालिद से किसास नहीं लिया जा सकता और गुलाम की वजह से आका से किसास नहीं लिया जा सकता। तो कहते हैं वलिहादा, और इसी वजह से ला युकादुल वालिदु बिवलदिही, वालिद से किसास नहीं लिया जा सकता बिवलदिही उसकी औलाद की वजह से। वलसय्यदु बिअब्दिही, और ना आका से उसके गुलाम की वजह से। भाई देखो, बाप अगर अपने बेटे को कत्ल कर दे, तलवार से कत्ल किया है, और आपने पढ़ा है कोई दूसरे को आला कत्ल से कत्ल करे तो उस पर किसास आता है। तो याद रखो यहां पर भी बाप पर अव्वलन किसास आया, लेकिन फिर शुबह मिल्कियत की वजह से किसास साकित हो गया, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से फरमाया था अंता व मालू कली अबी का, और नीज यहां हदीस में भी आ गया ला युकादुल वालिदु लिवलदी ही भाई। तो लिहाजा बाप से किसास नहीं लिया जा सकता, अलबत्ता बाप पर अब दियत वाजिब हो जाएगी। जैसे गुज़श्ता सबक के अंदर मसला आया था कि एक काजी ने एक आदमी को रजम करने का हुक्म दिया और फिर एक आदमी ने उस आदमी को कत्ल कर दिया तलवार से, और बाद में पता चला कि वो जो गवाह थे वो गुलाम थे, तो फिर इस सूरत में कियास ये तकाजा करता है कि इस कातिल को भी किसास में कत्ल करना चाहिए। लेकिन इस्तेहसानन हमने कहा था कि वहां शुबा मौजूद है, और वो था काजी का फैसला। जो काजी ने रजम करने का फैसला किया था उस वक्त तक तो वो सहीह था जाहिरी एतबार से, तो लिहाजा वहां फिर जब किसास नहीं आया तो दियत आ गई। तवज्जो है? तो यहां पर भी बाप अपने बेटे को कत्ल करेगा तो किसास तो नहीं आएगा, किसास तो नहीं आएगा, अलबत्ता दियत आ जाएगी भाई। तो बाप पर किसास तो नहीं आया, अलबत्ता याद रखो उखरवी सजा मिलेगी भाई कि उसने अजीम जुर्म किया है, एक मुसलमान को कत्ल किया है भाई। तो कहते हैं वलिहाजा ला युकादुल वालिदु बिवलदिही वलसय्यदु बिअब्दिही, और इसी वजह से वालिद से औलाद का किसास नहीं लिया जा सकता और आका से अपने गुलाम का किसास नहीं लिया जा सकता। वलौ काना लहबनु मिन गैरिही लहू अन युतालिब लितहक्कुकि सबबि वनइदामिल मानिई, हां अगर उस औरत का कोई और बेटा है जो किसी और खावन से है, असल में वो औरत जिसका इंतकाल हो चुका है, इस औरत ने पहले निकाह किया था जैद से और उस जैद से इसका एक बेटा है, इसके बाद इस औरत ने मसलन निकाह किया अमर से और फिर अमर से भी इसका एक बेटा है, अब उस औरत का इंतकाल हो चुका है, वो मोहसना थी, तो अब ये जो दूसरा खावंद है अमर, इसने अपने बेटे से कहा ए जानिया के बेटे, तो अमर का अपना बेटा जो है जो उस औरत का भी बेटा है ये तो कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता अपने बाप से, लेकिन उस औरत का जो दूसरा बेटा है जो जैद से था वो मुतालबा कर सकता है कि इसने मेरी मां पर जिना का इल्जाम लगाया है, लिहाजा इस पर हद कजफ जारी की जाए भाई। तो ये माना है वलौ कान लहबनु मिन गैरिही, और अगर इस औरत का बेटा था इस खावन के अलावा किसी और से, लहू अयु तालिबा, तो उस बेटे के लिए जायज है कि वो मुतालबा करे, लितहक्कुकि सबबी, इसलिए क्योंकि सबब पाया गया वजूब हद का, सबब पाया गया कि इस शख्स ने जिनाब का इल्जाम लगाया है उसकी मोहसना मां पर। वन इदामिल मानिई, और इसलिए क्योंकि मानिअ मादूम है, वो उस आदमी का अपना बेटा जो है वो तो कजफ का मुतालबा नहीं कर सकता था क्योंकि वहां मानिया मौजूद था, लेकिन यह तो इसका अपना बेटा नहीं, यहां मानिया नहीं है भाई। आगे देखिए, वमन कजफ गैरहू फमात अल मकजूफ बतल अल हद वकाल शाफी रहिमहुल्लाह तआला ला यबतुलू। भाई अब वो मसला आ गया, मैंने आपको बतलाया था इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक हद कजफ के अंदर वरासत जारी होती है, जबकि हमारे नजदीक हद कजफ में वरासत जारी नहीं होती। जिस शख्स पर इल्जाम लगाया गया है वो जिंदा है तो वही हद कजफ का मुतालबा कर सकता है, कोई और नहीं, और अगर ये शख्स मर गया तो फिर हद साकित हो जाएगी। तो कहते हैं वमन कजफा गए रहू, और जिस शख्स ने दूसरे पर जिना का इल्जाम लगाया, फमात अल मकजूफ, तो वो शख्स जिस पर जिना का इल्जाम लगाया गया था वो मर गया, बतल अल हद, तो हद बातिल हो गई। وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يبطل, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हद बातिल नहीं है, इसमें वरासत जारी होगी। वलौ मात बाद मा उकीम बाज़ुल हद, और अगर वो मकजूफ मर गया बाद इसके कि जब बाज़े हद कायम कर दी गई थी, तो बतल अल बाकी, तो बाकी हद बातिल हो जाएगी। भाई कुछ हद कायम की गई थी कि दरमियान में मकजूफ का इंतकाल हो गया। तवज्जो है, मसलन एक आदमी ने दूसरे पर जिना का इल्जाम लगाया और फिर काजी के पास इल्जाम साबित हो गया और इस शख्स को काजिफ को कोड़े लगाए जा रहे थे, अभी दो चार कोड़े ही लगे थे कि वो जो मकजूफ था उसका इंतकाल हो गया, तो याद रखो बाकी हद साकित हो जाएगी। भाई ये माना है, वलौ मात बादमा उकीम बाज़ुल हद, और अगर मकजूफ का इंतकाल हो गया कुछ हद के कायम होने के बाद, बतल अल बाकी, तो बाकी हद बातिल हो जाएगी। ऐंदना हमारे नजदीक, खिलाफन लहू बखिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के, उनके नजदीक बाकी हद साकित नहीं होगी, वो लगाई जाएगी। बिना अन अला अन्नहु यूरसु इंदहू, बिना बर इसके कि ये जो हद कजफ है इसमें वरासत जारी होती है, इंदहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक, व इंदना ला यूरसु, और हमारे नजदीक इसके अंदर वरासत जारी नहीं होती। वला खिलाफ अन्न फीही हक शरई व हक अल अब्दी, और इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हद कजफ के अंदर शरीयत का भी हक है और बंदे का भी हक है। हमारे नजदीक भी हद कजफ के अंदर शरीयत का भी हक है और बंदे का भी हक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी हमारे साथ इस बात में इत्तेफाक करते हैं कि हद कजफ के अंदर बंदे का भी हक है और शरीयत का भी हक है। तो यह माना है, वला खिलाफ अन्न फीही हक शरई व हक अल अब्दी, और इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हद कजफ के अंदर शरीयत का भी हक है और बंदे का भी हक है। फइन्नहु शुरिअ लिदफ़इल आर अनिल मकज़ूफ, अब साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि कैसे पता चला कि शरीयत का हक है और बंदे का हक है, यह कैसे पता चला। तो याद रखो, आपको बतलाएंगे, अगर एक चीज का फायदा किसी खास आदमी को पहुंच रहा है, मालूम हुआ यह हकुल अब्द है, यह इस आदमी का हक है, और अगर एक चीज का फायदा तमाम लोगों को पहुंच रहा है, मालूम हुआ यह हकुल्लाह है, भाई यह हक शरा है। तो हद कजफ के अंदर दोनों पहलू हैं, हद कजफ की वजह से उस मकजूफ को फायदा होगा कि उससे आर खत्म हो जाएगा, उससे आर खत्म हो जाएगा, तो देखो उस मखसूस आदमी को फायदा हो रहा है इस हद कजफ की वजह से। मालूम हुआ यह हद कजफ जो है यह हकुल अब्द है, और दूसरी तरफ इसका फायदा यह है कि इसकी वजह से और लोग भी इस जुर्म से रुकेंगे, तो देखो दुनिया से फसाद खत्म होगा, तो ये अलामत है हक शरा होने की। तो एक चीज का फायदा खास हो तो मालूम हुआ यह हकुल अब्द है, और एक चीज का फायदा आम हो तो मालूम हुआ यह हक शरा है भाई। तो कहते हैं फइन नहु शुरिअ लिदफ़इल आर अनिल मकज़ूफी, इसलिए क्योंकि यह हद कजफ मशरू हुई है, लिदफ़इल आर अनिल मकज़ूफी, ताकि मकज़ूफ से आर को दूर किया जाए। वह हुवल्लज़ी यंतफ़िउ बिही अलल ख़ुसूसी, और यह मकज़ूफ है जो इससे फायदा उठाता है खसूस के तरीके पर, यानी खास तौर पर उसी को यह फायदा हो रहा है। फमिन हादल वजह हक़ुल अब्द, तो इस एतबार से यह हद कज़फ जो है बंदे का हक है। सुम्म इन्नहु शुरिअ ज़ाजिरन, फिर उसके बाद यह जो हद कज़फ है यह मशरू की गई है, ज़ाजिरन, इस एतबार से कि यह धमकाने वाली है। ज़ाजिर का माना है धमकाने वाला, डराने वाला, डांटने वाला। ثم انه شرع زاجرا, پھر یہ حد قذف جو ہے یہ مشروع ہوئی ہے دھمکانے والی ہو کر, ومنه سمي حدا, اور اسی وجہ سے اس کو حد کہتے ہیں, اسی وجہ سے اس کو حد کہتے ہیں. حد کو حد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حد کا معنی ہے روکنا, اور یہ حد بھی لوگوں کو جرم سے روکتی ہے بھائی. تو کہتے ہیں ثم انه شرع زاجرا, پھر یہ حد قضا مشروع ہوئی ہے دھمکانے والی ہو کر, ومنه سمي حدا, اور اسی وجہ سے اس کو حد کہتے ہیں. والمقصود من شرع الزاجر, اور دھمکانے والی چیز کے مشروع کرنے سے جو مقصود ہوتا ہے, اخلاء العالم عن الفساد, وہ عالم کو خالی کرنا ہے فساد سے. والمقصود من شرع الزاجر, کوئی ڈرانے والی یا دھمکانے والی چیز, اس کے مشروع کرنے کا مقصد عالم کو فساد سے خالی کرنا ہوتا ہے, اور یہ حق شرع ہونے کی علامت ہے. تو کہتے ہیں والمقصود من شرع الزاجری, اور زاجر کے مشروع کرنے کا جو مقصود ہے, اخلاء العالم عن الفساد, وہ عالم کو فساد سے خالی کرنا ہے. وہذا آیت حق الشرعی, اور یہ حق شرع ہونے کی نشانی ہے. وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ, اور ان میں سے ہر ایک پر احکام گواہی دیتے ہیں. یعنی یہ جو حد قذف ہے, اس کے بعض احکام سے پتا چلتا ہے یہ بندے کا حق ہے, اور اسی طرح اس کے بعض احکام سے پتا چلتا ہے کہ یہ شریعت کا حق ہے. یہ حد قذف سے متعلق بعض احکام کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے یہ بندے کا حق ہے, اور بعض احکام کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے یہ شریعت کا حق ہے. مثلا دیکھو یہ حاشیے میں انہوں نے بعض ذکر کیے ہوئے ہیں کہ یہ حد قذف جو ہے پرانی ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوتی, اور حدود پرانی ہونے سے ساقط ہو جاتی ہیں, لیکن حد قذف پرانی ہونے سے بھی ساقط نہیں ہوتی. یہ علامت ہے حق عبد ہونے کی. اور نیز اسی طرح حد قذف کے اندر ایک دفعہ کوئی اقرار کر لے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا, اس کے رجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہے. معلوم ہوا یہ حق العبد ہے, کیونکہ حق اللہ کے اندر تو رجوع کیا جا سکتا ہے بھائی. مثلا حد زنا ہے, یا حد سرقہ ہے, یا اسی طرح حد شرب خمر ہے, یہ اقرار کی وجہ سے حد ثابت ہوئی اور بعد میں وہ آدمی رجوع کر لے تو یہ حد ساقط ہو جاتی ہے, کیونکہ خالص اللہ کا حق ہے. جبکہ حد قذف بندے کا حق ہے, اقرار کی وجہ سے ایک دفعہ ثابت ہو گئی تو بعد میں رجوع بھی کرے گا تو اب یہ ساقط نہیں ہوگی بھائی. تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ حق العبد ہے بھائی. اور اسی طرح حد قذف کے اندر دعویٰ ضروری ہے, اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ حق العبد ہے, کیونکہ حقوق اللہ کے اندر تو دعویٰ ضروری نہیں ہوتا بھائی. اور اسی طرح بعض احکام سے پتا چلتا ہے کہ یہ شریعت کا حق ہے, یہ شریعت کا حق ہے بندے کا حق نہیں. اور وہ اس طرح کہ جب قاضی کے پاس حد قذف ثابت ہو گئی, اب وہ جو صاحب حق ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا تھا لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں. نہیں بھائی, اب آپ معاف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حق شریعت ہے, یہ آپ کا حق نہیں. تو صاحب حق بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حق عبد نہیں ہے بلکہ یہ حق شرع ہے بھائی. اور اسی طرح اس کے اندر اگر گواہ نہ پیش کر سکا وہ آدمی, وہ مدعی اگر گواہ نہ پیش کر سکا تو الزام لگانے والے پر قسم نہیں آئے گی. حالانکہ حق العبد کے اندر البینت علی المدعی والیمین علی من انکر, مدعی کے ذمہ بینہ ہوتی ہے, اور اگر وہ بینہ پیش نہ کر سکے تو دوسرے شخص پر قسم آتی ہے. لیکن یہاں پر اگر مدعی بینہ پیش نہ کر سکا تو دوسرے شخص پر قسم نہیں آئے گی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حق شرع ہے, یہ حق عبد نہیں. اگر حق عبد ہوتا تو منکر پر قسم آتی بھائی. اور اسی طرح غلامی کی وجہ سے یہ حد قذف جو ہے نصف ہو جاتی ہے, یہ بھی علامت ہے حق شرع ہونے کی. معلوم ہوا یہ حق شرع ہے, یہ حق عبد نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْأَحْكَامُ, اور ان میں سے ہر ایک پر احکام گواہی دیتے ہیں. یعنی اس کے حق شرع ہونے پر بھی بعض احکام گواہی دیتے ہیں, اور اس کے حق عبد ہونے پر بھی بعض احکام گواہی دیتے ہیں بھائی. کہتے ہیں وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْجِهَتَانِ, تو معلوم ہوا یہ جو حد قذف ہے اس کے اندر حق العبد بھی ہے اور اس کے اندر حق شرع بھی ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ نے اس میں حق عبد کو غالب قرار دے دیا, حق عبد کو غالب قرار دے دیا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ محتاج ہے, بندہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے, شریعت کسی چیز کی محتاج نہیں. لہذا یہاں پر حق تو دونوں کا ہے لیکن بندہ چونکہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے لہذا بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا. بندہ محتاج ہے لہذا بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر حق شریعت کو غالب قرار دیا جائے گا. اس لیے کیونکہ یہاں بندے کا بھی حق ہے اور شریعت کا بھی حق ہے, یعنی یوں کہ اللہ کا بھی حق ہے. تو اللہ کے حق کو اگر آپ غالب قرار دے دیں گے تو اللہ ہی نگہبان ہے بندوں کے حقوق کا بھی, تو اللہ ہی بندوں کے حقوق کا بھی نگہبان ہے. تو دیکھو یہاں حق العبد کی بھی رعایت ہو گئی. جب اللہ کے حق کو آپ نے غالب قرار دے دیا اور اللہ تو بندوں کے حقوق کا بھی نگہبان ہے تو بندے کے حق کی بھی نگہبانی ہو گئی اور حفاظت ہو گئی. توجہ ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں تو پھر اس صورت کے اندر حق شرع بالکل باطل ہو جائے گا. توجہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس میں بندے کے حق کو غالب قرار دیا کیونکہ بندہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے لہذا بندے کے حق کو انہوں نے غالب قرار دے دیا. جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں, یہاں شریعت کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا. اس لیے کیونکہ اللہ بندے کے حق کے بھی نگہبان ہیں تو بندے کے حق کی بھی رعایت ہو گئی اور اللہ کے حق کی بھی رعایت ہو گئی. اور اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں تو بندہ جو ہے وہ تو شریعت کے حق وصول نہیں کر سکتا, تو لہذا صرف بندے کے حق کی رعایت ہوگی اور اللہ کا حق جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا, وہ باطل ہو جائے گا. کیونکہ بندہ اللہ کے حق کا نگہبان بن جائے, اس کو وصول کرنے والا بن جائے, ایسا نہیں ہے. اللہ کے حقوق وہ خلیفۃ المسلمین وصول کرتا ہے, امام وصول کرتا ہے. یہ حدود کون نافذ کرتا ہے؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے مسلمانوں کا امام ہے اور اس کے مقرر کیے ہوئے جو قاضی ہیں یہ اللہ کے حقوق وصول کرتے ہیں. ہر بندہ اللہ کے حقوق وصول کرنے والا نہیں ہے بھائی. تو لہذا یہاں پر اگر اللہ کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اللہ تو سب کے حقوق کے نگہبان ہیں تو بندے کے حق کی بھی رعایت ہو گئی. اور اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں گے تو بندہ جو ہے وہ تو اللہ کے حقوق کو وصول کرنے والا نہیں بن سکتا بھائی. تو پھر اس صورت میں حق اللہ کو باطل قرار دینا پڑے گا. تو ہم نے جو صورت اختیار کی اس میں دونوں حقوق کی رعایت ہو گئی اور یہ اولا ہے بجائے اس کے کہ صرف ایک جانب کی رعایت کی جائے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَعَارَزَتِ الْجِهَتَانِ, اور جب یہ دونوں جانبوں کے درمیان تعارض آ گیا, ایک جہت کیا ہے کہ حق العبد ہے, دوسری جہت کیا ہے کہ حق شرع ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا تَعَارَزَتِ الْجِهَتَانِ, اور جب یہ دونوں جہتیں یہ دونوں جانبیں جو ہیں ان میں تعارض آ گیا, فَالشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَالَ إِلَى تَغْلِيبِ حَقِّ الْعَبْدِ, تو امام شافعی رحمہ اللہ مائل ہوئے ہیں اس بات کی طرف کہ بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا. تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ حَاجَتِهِ وَغِنَى الشَّرْعِ, تو بندے کے حق کو مقدم کرتے ہوئے, بے اعتبار حاجت ہی وغینا شرعی, بندے کی حاجت اور شریعت کی بے نیازی کے اعتبار سے. تقدیمن لحق العبدی, یاد رکھو یہ تقدیمن یہ مفعول لہو ہے. مفعول لہو وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے. ضربتہ تادیبن, میں نے اس کی پٹائی کی, تادیبن ادب سکھانے کے لیے. معلوم ہوا ضرب لگانے کی علت کیا تھی؟ ادب سکھانا. تو یہاں پر بھی یہ تقدیمن مفعول لہو ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے کس وجہ سے؟ تقدیمن لحق العبدی, بندے کے حق کو مقدم کرنے کے لیے, بندے کے حق کو مقدم کرنے کے لیے. بے اعتبار حاجت ہی وغینا شرعی, اس اعتبار سے کہ بندہ جو ہے وہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے, شریعت کسی کے محتاج نہیں ہے بھائی. تو یہ تقدیمن جو ہے یہ مفعول لہو ہے بھائی. توجہ ہے. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے, فالشافعی رحمہ اللہ تعالی مال الى تغلیب حق العبد, تو امام شافعی رحمہ اللہ مائل ہوئے ہیں اس بات کی طرف کہ بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے. تقدیما لحق العبد, بندے کے حق کو مقدم کرنے کے لیے. باعتبار حاجته وغنى الشرع, اس اعتبار سے کہ بندہ محتاج ہے اور شریعت بے نیاز ہے. وَنَحْنُ سِرْنَا إِلَى تَغْلِيبِ حَقِّ شَرْعِ اور ہم شریعت کے حق کو غالب قرار دینے کی طرف گئے ہیں لِأَنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنَ الْحَقِّ اس لیے کیونکہ بندے کا جو حق ہے يَتَوَلَّاهُ مَوْلَاهُ اس کا متولی ہو جائے گا اس کا مولا یعنی اللہ اللہ اس کے نگہبان ہو جائیں گے فَيَسِيرُ حَقُّ الْعَبْدِ مَرْعِيًّا بِهِ تو اس سے بندے کا حق جو ہے اس کی بھی رعایت ہو جائے گی وَلَا كَذَلِكَ عَكْسُهُ اور اس کا برعکس جو ہے وہ ایسا نہیں یعنی اگر بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اس صورت میں اللہ کے حق کو باطل قرار دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلَا كَذَلِكَ عَكْسُهُ اور اس کا برعکس ایسا نہیں ہے یعنی اس کے اندر اللہ کے حق کی رعایت نہیں ہوگی اگر ہم بندے کے حق کو غالب قرار دے دیں کس طرح وہ بھی آگے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْعَبْدِ فِي اسْتِفَاءِ حُقُوقِ الشَّرْعِ إِلَّا نِيَابَتًا لِأَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْعَبْدِ اس لیے کیونکہ بندے کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے فِي اسْتِفَاءِ حُقُوقِ الشَّرْعِ حقوق شریعت کو وصول کرنے کی إِلَّا نِيَابَتًا مگر بطور نائب ہونے کے بطور نائب ہونے کے وہ شریعت کے حقوق وصول کر سکتا ہے اور وہ اختیار صرف امام کو ہے یعنی خلیفۃ المسلمین کو یا اس کے جو نائب ہیں ان کو حق ہے ہر بندے کو یہ حق نہیں ہے یاد رکھو امام المسلمین اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے بھائی وہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ وصول کرتا ہے تو خلیفۃ المسلمین اللہ کا نائب ہو کر اللہ کے حقوق وصول کرتا ہے یا اسی طرح یہ خلیفۃ المسلمین آگے جن کو اپنا نائب بنا دے اللہ کے حقوق وصول کرنے کے لیے جیسے مختلف شہر کے گورنر ہوتے تھے یا جیسے قاضی ہوتا تھا تو یہ ان سب کو خلیفہ مقرر کرتا ہے تو یہ خلیفہ کے نائب ہو گئے معلوم ہوا اللہ کا حق وصول کرنا یہ صرف خلیفہ کا یا اس کے نائبوں کا کام ہے عام لوگوں کا یہ حق نہیں ہے تو لہذا اگر بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے گا تو پھر عام بندے وہ تو اللہ کے نائب نہیں ہیں وہ تو اللہ کا حق وصول کرنے کی اہل نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں بندے کے حق کی تو رعایت ہو جائے گی کہ آپ نے بندے کے حق کو غالب قرار دے دیا لیکن اللہ کے حق کی رعایت نہیں ہوگی اللہ کے حق کو باطل قرار دینا پڑے گا تو اگر بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اللہ کے حق کو باطل قرار دینا پڑتا ہے اور اگر اللہ کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو اس میں بندے کے حق کی بھی حفاظت اور رعایت ہو گئی کیونکہ اللہ سب کے حقوق کی حفاظت فرمانے والے ہیں سب کے حقوق کی اللہ تو لہذا ہماری صورت اولا ہے کہ اس کے اندر دونوں حقوق کی رعایت ہو گئی حق العبد کی بھی اور حق شرع کی بھی جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ جس طرف گئے ہیں اس کے اندر صرف بندے کے حق کی رعایت ہے شریعت کے حق کی رعایت نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لِلْعَبْدِ اس لیے کیونکہ بندے کو ولایت نہیں ہے فِي اسْتِفَاءِ حُقُوقِ الشَّرْعِ شریعت کے حقوق کے وصول کرنے میں إِلَّا نِيَابَةً مگر بطور نائب ہونے کے یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ اے احناف یہاں پر آپ نے حق اللہ کو غالب قرار دیا کہ اگر ہم اللہ کے حق کو غالب قرار دیں گے تو بندے کے حق کی بھی رعایت ہو جائے گی اور بندے کے حق کو غالب قرار دیں تو اللہ کے حق کی رعایت نہیں ہوتی لہذا اے احناف آپ نے یہاں اللہ کے حق کو غالب قرار دیا لیکن کتنے ہی مسائل کے اندر جہاں حق اللہ اور حق العبد کے درمیان ٹکراؤ آتا ہے آپ بندے کے حق کو غالب قرار دیتے ہیں اور وہاں آپ بھی یہی دلیل ذکر کرتے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے ذکر کی کہ بندہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہیں بھائی توجہ ہے اشکال سمجھ میں آیا کہ اے احناف آپ نے مختلف مسائل کے اندر بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے تو یہاں پھر آپ کیسے امام شافعی رحمۃ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کے حق کو غالب قرار دے رہے ہیں تو جواب اس کا یاد رکھنا جواب یہ کہ جہاں پر اللہ کا حق اور بندے کے حق میں ایسا ٹکراؤ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پر بندے کے حق کو غالب ہم قرار دیتے ہیں لیکن جہاں دونوں کو جمع کرنا اور دونوں کی رعایت رکھنا ممکن ہو جیسے یہاں پر ہے یہاں پر اللہ کے حق کو ہم غالب قرار دیں تو بندے کے حق کی بھی رعایت ہو جاتی ہے تو ایسے مقام پر ہم دونوں حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ کے حق کو غالب قرار دیتے ہیں اور جہاں پر دونوں حقوق کی رعایت ممکن ہی نہ ہو جمع کی کوئی صورت ہی نہ ہو تو پھر مجبوراً ہم بندے کے حق کو غالب قرار دیتے ہیں لیکن یہاں دونوں حقوق کی رعایت ممکن تھی اس لیے ہم نے دونوں کی رعایت کی اور اللہ کے حق کو غالب قرار دیا بات سمجھ میں آ گئی وهذا هو الاصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها. وهذا هو الاصل المشهور, اور یہ ہے وہ مشہور ضابطہ, الذي يتخرج عليه, کہ جس پر نکلتے ہیں, الفروع المختلف فيها, وہ فروع جن میں اختلاف کیا گیا ہے. یہ ہے وہ ضابطہ جس پر ایسی فروع نکلتی ہیں جن میں اختلاف کیا گیا ہے, یعنی جن میں ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے. الفروع المختلف فيها, یاد رکھو یہ المختلف, یہ اس میں مفعول کا صیغہ پڑھیں گے, الفروع المختلف فيها, وہ فروع جن کے اندر اختلاف کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں وهذا هو الاصل المشهور, یہی وہ مشہور ضابطہ ہے, الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها, جس پر وہ فروع نکلتی ہیں جن کے اندر اختلاف کیا گیا ہے. منها الارث, ان فروع میں سے ایک وراثت ہے, ان فروع میں سے ایک وراثت ہے. اذ الارث يجري في حقوق العباد لا في حقوق الشرع, اس لیے کیونکہ وراثت جو ہے وہ حقوق العباد کے اندر جاری ہوتی ہے, لا في حقوق الشرع, حقوق شرع کے اندر نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے بندے کے حق کو غالب قرار دیا ہے, اس لیے وہ فرماتے ہیں اس میں وراثت جاری ہوگی, اور جبکہ ہم نے شریعت کے حق کو غالب قرار دیا ہے, اور شریعت کے حقوق میں تو وراثت جاری نہیں ہوتی, اس لیے ہمارے نزدیک اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں من حل ارسو, ان فروع میں سے ایک وراثت ہے. اذ الارث یجری فی حقوق العباد لا فی حقوق الشرع, اس لیے کیونکہ وراثت جو ہے حقوق العباد میں جاری ہوتی ہے, لا فی حقوق الشرع, نہ کہ حقوق شرع کے اندر. ومن حل عفو, اور ان فروع میں سے ایک معاف کرنا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَصِحُ عَفْوُ الْمَقْذُوفِ عِنْدَنَا, اس لیے کیونکہ ہمارے نزدیک مقذوف کا معاف کرنا صحیح نہیں ہے. قاضی کے پاس جب ایک دفعہ حد قذف ثابت ہو گئی تو پھر اب مقذوف کا معاف کرنا صحیح نہیں, کیونکہ یہ حق شرع ہے, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مقذوف کا معاف کرنا صحیح ہے کیونکہ یہ حق عبد ہے بھائی. تو کہتے ہیں لا يصح عفو المقذوف عندنا, ہمارے نزدیک معاف کرنا صحیح نہیں ہے. ويصح عنده, اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک صحیح ہے. ومنها, اور ان فروع میں سے ایک یہ ہے, کہ انه لا يجوز الاعتیاض عنه, کہ جائز نہیں ہے اس حد قذف سے عوض لینا. حد قذف کا عوض لینا صحیح نہیں, جیسے دیکھو بھائی کسی پر قصاص آتا ہے, قصاص آتا ہے تو مقتول کے اولیاء قصاص کے بدلے مال لے سکتے ہیں, عوض لے سکتے ہیں, لیکن یہ حد قذف جو ہے یہ حق شرع ہے, یہ حق عبد نہیں ہے, لہذا یہاں حد قذف کا عوض نہیں لیا جا سکتا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک حد قذف جو ہے وہ حق عبد ہے, لہذا اس کا عوض لینا صحیح ہے بھائی. تو کہتے ہیں ومنها, اور ان فروع میں سے ایک یہ ہے, کہ انه لا يجوز الاعتیاض عنه, کہ اس حد قذف کا عوض لینا جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک. ويجري فيه التداخل, اور نیز اس کے اندر تداخل جاری ہوتا ہے. ان فروع میں سے کیا ہے کہ اس کے اندر تداخل جاری ہوتا ہے. دیکھو جیسے آپ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی آیت سجدہ کو جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں, ایک ہی سجدہ آپ پر واجب ہوگا, کیونکہ یہ حق شرع ہے اور حق شرع کے اندر تداخل ہوتا ہے. اسی طرح حد قذف بھی ہمارے نزدیک حد شرع ہے, لہذا ایک آدمی کئی آدمیوں پر زنا کی تہمت لگا دے, یا ایک ہی آدمی پر کئی دفعہ زنا کی تہمت لگا دے, تو تمام صورتوں میں ایک ہی حد جو ہے وہ کافی ہو جائے گی, ان حدود کے اندر تداخل ہو جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بندے کا حق غالب ہے اور حقوق العباد کے اندر تو تداخل نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی نے زید سے بھی 5000 لیے, عمر سے بھی 5000 لیے, بکر سے بھی 5000 لیے, خالد سے بھی 5000 لیے, اور پھر کہتا ہے بھائی ان میں تداخل ہو گیا, اب میں صرف 5000 واپس کروں گا, اسی کو آپس میں تقسیم کر لو. تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ حق العبد ہے اور حق العبد کے اندر تداخل نہیں ہوتا. تو چنانچہ امام شافعی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حد قذف چونکہ حق العبد ہے, لہذا اس کے اندر تداخل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں وَيَجْرِ فِيهِ التَّدَاخُلُ, اور اس حد قذف کے اندر تداخل بھی جاری ہوگا ہمارے نزدیک. وَعِنْدَهُ لَا يَجْرِ, اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں تداخل جاری نہیں ہوگا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعَفْوِ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے معاف کر دینے کے بارے میں امام امام شافی رحمہ اللہ کے مثل روایت ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت آتی ہے معاف کر دینے کے بارے میں، امام شافی رحمہ اللہ کے مثل، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ حد قذف کو صاحب حق معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے تو کہتے ہیں وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْغَالِبَ حَقُّ الْعَبْدِ، اور ہمارے فقہا میں سے بھی بعض وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ان الغالب حق العبد، کہ حد قذف کے اندر بندے کا حق غالب ہے۔ وخرج الاحکام، اور اسی پر انہوں نے احکام نکالے ہیں۔ والاول اظہر، اور پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی معاف کر دینے کے بارے میں ایک روایت اسی طرح ہے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ سے ہے، اور نیز ہمارے بعض دیگر فقہا بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حد قذف کے اندر بندے کا حق غالب ہے، اور اسی ضابطے پر پھر انہوں نے احکام بھی نکالے ہیں، لیکن پہلا قول وہ زیادہ ظاہر ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے نزدیک حد قذف کے اندر حق اللہ غالب ہے۔ بھائی آگے دیکھیے ومن اقر بالقصد ثم رجع لم يقبل رجوعه، کہتے ہیں ومن اقر بالقصد، اور جس شخص نے زنا کا الزام لگانے کا اقرار کر لیا، ثم رجع، پھر اس نے رجوع کر لیا، لم يقبل رجوعه، تو اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے رجوع کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں مقذوف اس کو جھٹلا رہا ہے، مقذوف اس کو جھٹلا رہا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں لم يقبل رجوعه، تو اس کا رجوع قبول نہیں کیا جائے گا، لأن للمقذوف فيه حقا، اس لیے کیونکہ اس حد قذف کے اندر مقذوف کا بھی حق ہے، فيكذبه في الرجوع، تو وہ جھٹلائے گا اس کو رجوع کے اندر، بخلاف ما هو خالص حق الله تعالى، بخلاف اس حد کے جو خالص اللہ کا حق ہو، وہاں رجوع کر لے تو رجوع معتبر ہے، لأنه لا مكذب له فيه، اس لیے کیونکہ وہاں پر اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ ومن قال للعربی یا نبطی لم يحد لانه يراد به التشبيه في الاخلاق او عدم الفصاحه، بھئی ایک عربی کو ایک شخص نے ندا دی اور کہا یا نبطی، اے قوم نبط والے، نبطی بھئی نون پر بھی فتحہ ہے اور با پر بھی فتحہ ہے، یاد رکھو یہ نبط جو ہے یہ ایک قوم تھی عراق کے اندر آباد تھی، اور یہ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے کہ عربوں کے اندر کسی کی مذمت بیان کرنی ہوتی تھی تو ان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی برے اخلاق کے اندر، یا اسی طرح کوئی عرب جو ہے فصیح کلام پر قادر نہ ہوتا تو اس کو بھی نبط والوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی کہ تم تو ان کی طرح ہو بھائی۔ تو لہذا ایک شخص نے ایک عربی سے کہا یا نبطیو، اے نبط والے، تو کیا یہ زنا کا الزام ہے؟ کیا یہ اس آدمی کے نسب پر الزام لگا رہا ہے کہ تم قوم عرب سے نہیں ہو بلکہ قوم نبط سے ہو، لہذا کیا اس صورت میں حد آئے گی؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں، کسی عرب کو جب نبطی کہا جاتا ہے تو وہاں نسب کی نفی مراد نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر اس شخص کی مشابہت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے قوم نبط کے ساتھ، اس آدمی کے برے اخلاق کی وجہ سے یا غیر فصیح ہونے کی وجہ سے، تو یہ زنا کا الزام نہیں ہے، یہ صرف اس آدمی کی مذمت کی جا رہی ہے برے اخلاق کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومن قال لعربی، اور جس شخص نے کسی عربی سے کہا یا نبطی یو اے نبطی لم يحد، تو اس آدمی کو حد نہیں لگائی جائے گی، لأنه يراد به التشبيه في الاخلاق او عدم الفصاحت، اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے اخلاق یا عدم فصاحت میں تشبیہ کا، اخلاق کی تشبیہ دی جاتی ہے برے اخلاق ہونے کی وجہ سے یا عدم فصاحت یعنی غیر فصیح ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ تَشْبِيهُ فِي الْأَخْلَاقِ اَوْ عَدَمِ الْفَصَاحَتِ، اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے ارادہ کیا جاتا ہے اخلاق میں یا عدم فصاحت میں تشبیہ کا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَسْتَ بِعَرَبِيٍّ، اور اسی طرح جب ایک شخص نے دوسرے سے کہا لَسْتَ بِعَرَبِيٍّ، تو عربی نہیں ہے، ایک آدمی نے ایک عرب سے کہا لست بعربی، تو عربی نہیں ہے، तो क्या ये उसके नसब पर तान कर रहा है, क्या इस पर हद जारी होगी? कहते हैं नहीं, जब किसी शख्स को यूं कहा जाता है कि तू अरबी नहीं है तो यहां भी दरअसल उसकी मजम्मत बयान की जा रही होती है उसके अखलाक में या आदम फसाहत के अंदर। यानी तुम तो फसीह कलाम पर कादिर ही नहीं हो, तुम तो ऐसे ही हो जैसे गैर अरबी होता है, या तुम्हारे तो अखलाक बड़े बुरे हैं, मालूम होता है तुम अरबी हो ही नहीं भाई। तो कहते हैं वकदा इदा काला, और इसी तरह है हुक्म, यानी हद नहीं आएगी जब एक शख्स ने दूसरे से कहा लस्ता भी अरबी, इनके तो अरबी नहीं है, तो इसमें भी हद नहीं आएगी। लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कही कि इसके जरिए तशबीह का इरादा होता है बुरे अखलाक में, आदम फसाहत में, और यह बतौर मजम्मत के कहा जाता है। आगे देखिए वमन काल अली रजुलिन, और जिस शख्स ने दूसरे से कहा या बनामा इस समाई, ए आसमान के पानी के बेटे, या इबना मा इस समाई, ए आसमान के पानी के बेटे, तो क्या इस सूरत में हद कजफ आएगी? कहते हैं नहीं, अगर कोई शख्स किसी दूसरे को यबना मा इस समा कहता है तो इस सूरत में हद कजफ नहीं आएगी। ये कोई जिना का इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि ये तो तारीफ कर रहा है। मा उस समा भाई, मा उस समा से मुराद है बारिश का पानी, और बारिश का पानी जो है, देखो बारिश का फायदा आम होता है, वो बरसती है धार जगह पर बरसती है और सब लोगों को उसका फायदा पहुंचता है। तो बारिश का फायदा जिस तरह आम है, इसी तरह कोई बहुत बड़ा सखी हो जिससे हर आदमी को फायदा पहुंच रहा हो, तो अरबी में उसको मा उस समा कहते हैं। ये तो आसमान के पानी यानी बारिश की तरह है, हर एक को इससे फायदा पहुंच रहा है। या इसी तरह कोई शख्स ज्यादा हसीन और जमील हो तो उसको भी मा उस समा कहा जाता है, भाई जिस तरह आसमान का पानी साफ सुथरा और खालिस हो होता है, इसी तरह वो शख्स जो है वो भी हुस्न व जमाल के अंदर बड़ा निखरा हुआ और खूबसूरत है और साफ सुथरा है। भाई बात समझ में आ गई? तो लिहाजा मा उस समा, इससे मुराद सखावत या हुस्न व जमाल होता है। तो यबनामा इस समा का माना हुआ ए सखी आदमी के बेटे, या यबनामा इस समा ए हसीनो जमील आदमी के बेटे, तो यह माना मुराद होता है। यह तो तारीफ है, इसमें तो किसी किस्म का इल्जाम है ही नहीं, लिहाजा इसकी वजह से कोई हद कजफ नहीं आएगी। भाई बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वमन काला लीरा जुलिन, और जिस शख्स ने दूसरे आदमी से कहा यबनामा इस समाई, ए आसमान के पानी के बेटे, फलैस बिकाज़िफिन, तो ये उस पर इल्जाम लगाने वाला नहीं है। लिअन्नहु युरादु बिहि तशबीहु फिल जूदि वस्समाहति वस्सफा, इसलिए क्योंकि इसके जरिए इरादा किया जाता है अत्तशबीहु फिल जूदि वस्समाहति, जूद का माना भी सखावत, समाहत का माना भी सखावत, और सफा का माना साफ सुथरा होना, भाई निखरा हुआ होना। कहते हैं लिअन्नहु युरादु बिहि तशबीहु फिल जूदि वस्समाहति, इसके जरिए सखावत और फयाजी के अंदर तशबीह का इरादा किया जाता है, वस्सफाई और सफाई और निखरा हुआ होने के अंदर तशबीह का इरादा किया जाता है। लिअन्नमा अस्समाइ लुक्किब बिहि लिसफाइहि वसखाइहि, इसलिए क्योंकि मा उस समा जो है लुक्किब बिहि, इसके साथ लकब दिया जाता है, लिसफाइहि वसखाइहि, किसी शख्स के निखरा हुआ होने और उसकी सखावत की वजह से। कोई शख्स निखरा हुआ है यानी खूब हसीन और जमील है, या कोई शख्स बहुत सखी है, तो फिर मा उस समा के साथ उसको लकब दिया जाता है। यह माना है लिअन्नमा अस्समा इलुकिब बिही लिसफाइहि वसखाइहि, इसलिए क्योंकि मा उस समा जो है इसके साथ लकब दिया जाता है किसी आदमी को उसके साफ और निखरा हुआ होने की वजह से और उसकी सखावत की वजह से। आगे देखिए भाई वह इन न सबहू इला अम्मी ही औ खाली ही औ इला ज़ौजी उम्मी ही फलै सभी काज़िफिन, भाई सूरत ये एक शख्स ने एक आदमी की निस्बत कर दी उसके चचा की तरफ क्या फुलां के बेटे, या मामू की तरफ निस्बत कर दी क्या फुलां के बेटे, या मां का खावन जो है यानी इसकी मां ने दूसरे शख्स से निकाह कर लिया है और ये जो इसका सोतेला बाप है इसकी तरफ निस्बत करके कहा ए फुलां के बेटे, तो क्या ये जिना की तोहमत है? कहते हैं नहीं, ये जिना की तोहमत नहीं है। इन सब पर अरबी जुबान में अब का लफ्ज बोला जाता है भाई। तो कहते हैं वह इन न सबहू इला अम्मी ही, और अगर किसी शख्स ने निस्बत कर दी किसी की उसके चचा की तरफ, औ खाली ही या उसके मामू की तरफ, औ इला जौजी उम्मी ही या उसकी मां के खावंद की तरफ यानी सोतेले बाप की तरफ, फलैस बिकाज़िफिन, तो ये निस्बत करने वाला तोहमत लगाने वाला नहीं है, लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हा उलाई युसम्मा अबन, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक जो है उसको अब कहते हैं, अम्मल अव्वलु, तो पहला जो है यानी चचा, दलील हर एक की जिक्र करेंगे कि इनको अब क्यों कहते हैं, कहते हैं पहला जो है चचा जो है वली कौलिही ताला, वो अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाई का इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल होने लगा तो उस वक्त उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और उनको नसीहतें की और उनसे कहने लगे मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, यानी उन्हें तौहीद पर जमे रहने का दर्श दे रहे थे, तो उनसे कहा मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे जरा मुझे बतलाओ तो सही, तो वो कहने लगे कि हम आपकी इबादत करेंगे और आपके जो आबा हैं इब्राहिम इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम हम उनके माबूद की इबादत करेंगे। तो अब यहां पर देखो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके चचा हैं, लेकिन बेटों ने आबा को शुमार करते हुए चचा को भी साथ जिक्र किया, हम आपके माबूद की इबादत करेंगे और आपके आबा यानी इब्राहिम इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम जो है उनके माबूद की हम इबादत करेंगे, तो आबा के अंदर चचा को भी उन्होंने शुमार किया भाई, तो मालूम हुआ चचा को भी अब कहा जाता है। तो कहते हैं अम्मल अव्वल फली कौलिहि ताला, तो अव्वल जो है वो अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, नाबुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाका, कि हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके आबा इब्राहिम इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के माबूद की, वह इस्माइल कान अम्मन लहू, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चचा थे, वस्सानी लिकौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दूसरा जो है यानी मामू को भी अब कहा जाता है, वो उसकी दलील जो है हुजूर अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि आपने फरमाया अल खालु अबुन, मामू जो है वो बाप है, वस्सालिसु, और तीसरा जो है यानी सुतेला बाप जो है जो मां का खावंद है उसको भी अब कहते हैं, तो कहते हैं वसालिसु लितरबियती, और तीसरा जो है उसको अब कहते हैं लितरबियती, परवरिश करने की वजह से, कि यकीनन अब ये बेटा जो है इस मां के नए खावंद की परवरिश में है भाई, तो इसको भी अब कहा जाता है भाई। आगे देखिए वमन काल अली गैरी ही जाना अतफिल जबली व काल अनै तो सुऊद अल जबली खुद्दा, भाई याद रखो जैसे जना यजनी, जना यजनी का माना है जिना करना, ये नाकिस है भाई, हफ्त अकसाम में क्या है ये नाकिस है, और इसी तरह ये महमूज भी इस्तेमाल होता है जना यजनी उ, इसका माना भी जिना करना, इसी तरह जना यजनी उ जो महमूज है इसका माना ऊपर चढ़ने की भी आता है भाई। अब सूरत मसला ये, एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा जना तफिल जबली, जना तफिल जबली, और फिर पूछा गया कि भाई इसका क्या माना है, आप क्या कहना चाहते थे, तो उसने कहा मेरा मतलब यह था, मेरी मुराद थी पहाड़ पर चढ़ना, जना अतफिल जबली का माना है कि तू पहाड़ में चढ़ा, यानी पहाड़ पर चढ़ा भाई। तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर इस आदमी पर हद जारी की जाएगी, इसलिए क्योंकि ये उसने जिना का इल्जाम लगाया है और अब जान छुड़ाने के लिए कह रहा है मैंने तो पहाड़ पर चढ़ने के माना का इरादा किया था, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जना जब महमूज हो तो इसके माने ऊपर चढ़ने के भी आते हैं, और साथ इसने पहाड़ का लफ्ज भी जिक्र कर दिया है, मालूम हुआ उसने ऊपर चढ़ने के माना का ही इरादा किया है, लिहाजा इस शख्स को हद कजफ नहीं लगाई जाएगी। तो कहते हैं वह मन काल अली गैरी ही, और जिस शख्स ने दूसरे से कहा जन्ना अतफिल जबली व काला, और वो शख्स कहने वाला कहता है अनई तो सुऊद अल जबली, कि मैंने पहाड़ पर चढ़ने का इरादा किया, अना यानी का माना इरादा करना, और सुऊद स्वाद के साथ है, साइद या साइदो, सुऊद का माना ऊपर चढ़ना, व काला वो कहता है अनई तो सुऊद अल जबली, मैंने पहाड़ पर चढ़ने का इरादा किया, तो खुद तो उसको हद लगाई जाएगी। वहादा इंदा अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहमहुमल्ला, और ये शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक है। वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाह तआला ला युहद्दु, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इसको हद नहीं लगाई जाएगी। लिअन्न अल महमूज मिनहु लिस्सुउद हकीकतन, इसलिए क्योंकि ये जना यजनी से जो महमूज आता है, जना यजनी ये लिस्सुउद हकीकतन, ये हकीकतन ऊपर चढ़ने के लिए है। इसका माना क्या है? ऊपर चढ़ना। तो कहते हैं लिअन्न अल महमूज मिनहु लिस्सुउद हकीकतन, कि इस मादे से जो महमूज आता है वो ऊपर चढ़ने के लिए है हकीकत के एतबार से। कालत इमरातुम मिनल अरबी, अरब का कलाम जिक्र कर रहे हैं, शेर का एक मिसरा जिक्र कर रहे हैं। एक औरत ने अपने बच्चे से कहा था, वर्का इलल खैराती जीना अनफिल जबली। वर्का, याद रखो रकिया यरका, रकिया यरका का माना भी है ऊपर चढ़ना, और इसी से अमर है एरका, एरका, और फिर हमजा वसली है वो दर्जे इबारत में गिर जाएगा। वर्का असल में क्या था? व एरका, तो वर्का, और तू ऊपर चढ़ जा इलल खैराती नेकियों की तरफ। जिना अन फिल जबली, जिना अन, देखा ये वो आ गया जना यजनी ओ जिना अन, तो ये जिना अन फिल जबली पहाड़ में चढ़ने की तरह। ये मफूल मुतलक है, और आपने पढ़ा है मफूल मुतलक कभी तशबी के लिए आता है, जरब तो हूं जरबल कारी, मैंने उसकी कारी की तरह पिटाई की भाई। तो कहते हैं जिना अनफिल जबली, पहाड़ में चढ़ने की तरह। कोई मां अपने बेटे को नसीहत कर रही है, खूब नेकियां करो और नेकियों पर इसी तरह चढ़ते चले जाओ जिस तरह पहाड़ में कोई आदमी चढ़ता चला जाता है भाई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, देखो यहां पर भी जिना अन का लफ्ज आया और आगे फिल जबल आ रहा है, और इससे मुराद पहाड़ पर चढ़ना है भाई। तो कहते हैं कालत इमरातुम मिनल अरबी, अरब में से एक औरत ने कहा है, वर्का इलल खैराती जिना अनफिल जबली, कि तू नेकियों की तरफ चढ़ जा पहाड़ में चढ़ने की तरह, तू नेकियों की तरफ चढ़ जा जैसे कि पहाड़ में चढ़ते हैं। वज़िक्रुल जबली युकर्रिरुहु मुरादन, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ये जना आयसनी जो महमूज है ये ऊपर चढ़ने के लिए आता है, और फिर कलाम अरब भी उसने उन्होंने जिक्र कर दिया, और नीस फरमाते हैं कि यहां आदमी ने क्या कहा है जना अताफिल जबली, तो यहां उसने जबल का लफ्ज भी जिक्र कर दिया, और यह करीना बतला रहा है कि यहां इसने ऊपर चढ़ने के माना का इरादा किया है, जिना के माना का इरादा नहीं किया। तो कहते हैं वज़िक्रुल जबली, और पहाड़ का जिक्र करना, युकर्रिरुहु, वो इस ऊपर चढ़ने के माना को पक्का कर रहा है मुरादन, बैतबार मुराद होने के। इस आदमी ने जाना अताफिल जबल कहा है, जबल का लफ्ज साथ जिक्र कर दिया, ये जबल का लफ्ज बतला रहा है कि यहां उसने जाना से ऊपर चढ़ने के माना का इरादा किया है। तो कहते हैं वज़िक्रुल जबली युकर्रिरुहु मुरादन, और जबल का जिक्र जो है वो इसी माना को मुराद होने के एतबार से पक्का कर रहा है। वल्लहू मा, और शेखैन रहमहुल्लाह की दलील यह है कि अन्नहु युस्तामलु फिल फाहिशति महमूजन ऐज़न, वो फरमाते हैं कि ये जनाआ का लफ्ज जो महमूज है ये भी फाहिशा के अंदर इस्तेमाल होता है, फाहिशा यानी बुराई, जिना की जो बुराई है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। तो शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि अन्नहु युस्तामलु फिल फाहिशति महमूजन ऐज़न, कि ये लफ्ज जो है महमूज होते हुए भी बुराई यानी जिना के लिए इस्तेमाल होता है। लिअन्न मिनल अरबी मन युहम्मिज़ुल मुलय्यना, इसलिए क्योंकि अरब में से बास जो है मन यहमिज़ु जो हमजा बनाते हैं अल मुलय्यना नरम को, कमा युलय्यनुल महमूज़ु जैसे कि नरम बनाया जाता है महमूज को। भाई देखो एक है हमजा, हमजा जो है वो जरा सख्ती से अदा होता है, और एक है हुरूफ इल्लत अलिफ वाव और या, ये जब साकिन हो तो ये बड़ी नरमी से अदा होते हैं जी। जैसे बाब, देखो दरमियान में अलिफ है बाब, तो ये अलिफ नरमी से अदा हो रहा है, लेकिन यहीं पर अगर अगर हमजा साकिन होता तो बबुन, देखो झटके के साथ अदा होता। तो जैसे आपने सर्फ के अंदर कानून पढ़े हैं कि अगर हमजा साकिन आए तो उसको माकबल हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज है, जैसे युमिनु इसको युमिनु पढ़ना भी जायज है। तवज्जो है, हमजा साकिन को माकबल की हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज है। बदलना जायज है। तो हुरूफ इल्लत जो है वो तो नरमी से अदा होते हैं, मालूम हुआ महमूज को नरम बना दिया। तो इसी तरह बाज अरब इसका बरअक्स भी करते हैं, वो मुलयन को महमूज बना देते हैं। मसलन बाब है, इसको वो कहेंगे बाबुन, तवज्जो है। तो लिहाजा यहां पर भी असल में तो है जना, लेकिन बाज क्या पढ़ते हैं जना आ, और असल में क्या है यजनी, बाज क्या पढ़ते हैं यजनी ओ। मालूम हुआ ये जो महमूज है ये भी जिना के माना में इस्तेमाल होता है भाई। तो कहते हैं लि अन्न मिनल अरबी मैयह मिजुल मुलैना, और अरबों में से हैं जो हमजा बनाते हैं मुलैन यानी नरम को, नरम किए हुए लफ्ज को, यानी जिसके अंदर हर्फ इल्लत मौजूद है भाई। कमा युलयनुल महमूजू, जैसे कि महमूज को जो है नरम किया जाता है, यानी हमजा को कभी किससे बदल देते हैं हर्फ इल्लत से बदल देते हैं। वहालतुल गजबी वस्सिबाबी तो अय्यिनुल फाहिशत मुरादन, वहालतुल गजबी भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमा रहे थे कि जना तफील जबल, यहां जबल का करीना बतला रहा है कि इससे मुराद पहाड़ पर चढ़ना है, इससे जिना मुराद नहीं। तो शेखैन रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि हालत गजब के अंदर ये लफ्ज बोला गया है, ये इस बात की दलील है कि ये गाली दे रहा है, जिना की तोहमत लगा रहा है भाई। तो कहते हैं वहालतुल गजबी वस्सिबाबी, और गुस्से और गाली देने की जो हालत है तो आयनुल फाहिशता मुरादन, वो फाहिशा को मुतायन कर रही है मुराद होने के एतबार से कि इसे फाहिशा ही मुराद है। बिमंजिलती मा इदा काला, ये इसी दर्जे में है जब वो कहे या जानी उ, अगर सिर्फ या जानी उ कहे तो इसमें तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह भी हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं कि यह जिना का इल्जाम लगा रहा है। तो बिमंजिलति मा इदा काला या जानी उ, ये इसी दर्जे में है जब वो कहे या जानी उ औ काला जना अता, या वो जना अता कहे, यानी बगैर फिल जबल के, जबल का लफ्ज जिक्र न करे साथ, सिर्फ जना अता कहे, तो ये भी उसी तरह है। जना अता फिल जबल, ये किसकी तरह है, सिर्फ जना अता की तरह है या सिर्फ या जानी उ की तरह है, और उसके अंदर तो बिल इतफाक हद कजफ आएगी। तो जना अतफिल जबल के अंदर भी हद कजफ आएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वहालतुल गजब वस्सिबाबी, और गुस्से और गाली देने की जो हालत है तो आयिनुल फाहिशता मुरादन, यह मुतायन कर रही है फाहिशा को बेतबार मुराद होने के। बिमंजिलती मा इदा काला, ये इसी दर्जे में है जब वो ये कहे या जानी उ औ काला, या ये जब वो कहे जना अता। व जिक्रुल जबली, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि यह जो जबल का लफ्ज इसने साथ जिक्र किया है यह करीना है इस बात का कि ऊपर चढ़ने के माना का इरादा कर रहा है। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं, कहते हैं भाई यहां उसने जबल से पहले फी का लफ्ज जिक्र किया है, जनाता फिल जबली, अगर पहाड़ पर चढ़ने के माना का इरादा होता तो वो जनाता अलल जबली कहता। तो कहते हैं वदिक्रुल जबली इन नमा यू आयिनु सुऊदा मुरादन, और पहाड़ का जिक्र जो है वो ऊपर चढ़ने के माना को मुतायन करता है मुराद होने के एतबार से। इजा काना मकरूनन बिकलिमती अला, उस वक्त जब ये मिला हुआ हो अकलिमा अला के साथ। इद हुअल मुस्तामलु फीही, इसलिए क्योंकि अला ही इसमें इस्तेमाल होता है, ऊपर चढ़ने के माना में जब इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसके साथ अला इस्तेमाल होता है। आगे देखिए वलौ काला जना अता अलल जबली, अच्छा भाई अगर किसी ने यही लफ्ज कहे अला के साथ जना अता अलल जबली, तो क्या इस सूरत में हद आएगी या नहीं। तो बस वो कहा इस बात की तरफ गए हैं कि नहीं अब हद नहीं आएगी, क्योंकि अब अला बतला रहा है कि यहां से जनाता से ऊपर चढ़ने का माना मुराद है, जबकि बास कहते हैं नहीं फिर भी हद आएगी, इसलिए क्योंकि हमने आपको बता दिया कि गुस्से और गजब की हालत बतला रही है कि वो गाली देने का और जिना का इल्जाम लगाने का इरादा कर रहा है भाई। तो कहते हैं वलौ काला जना अता अलल जबली, और अगर उस शख्स ने जना अता अलल जबल कहा, कीला तो कहा गया है ला युहद्दु, इसको हद नहीं लगाई जाएगी। लिमा कुल ना, उस वजह से जो हमने कही, कि ये ऊपर चढ़ने के माना में है भाई। वकील और कहा गया है युहद्दु के इसको हद लगाई जाएगी लिल मानल लदी जकर नाहू उसी सबब से जो हमने जिक्र कर दिया। माना का यहां क्या तर्जमा करेंगे सबब लिल मानल लदी जकर नाहू उसी सबब की वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि गजब और गाली देने की हालत वो मुतायन कर रही है कि यहां फाहिशा का माना यानी जिना का माना मुराद है भाई। आगे देखिए वमन काल अली आखरा और जिस शख्स ने दूसरे से कहा या जानी भाई सूरत ये एक आदमी ने दूसरे से कहा या जानी ए जानी उसने जवाब में कहा ला बल अंता नहीं बल्कि तू है ला बल अंता नहीं बल्कि तू है तो इस सूरत में याद रखो दोनों पर हद कजफ वाजिब होगी अगर ये मुतालबा करेंगे तो दोनों को हद कजफ लगाई जाएगी। तो कहते हैं वमन काल अली आखरा या जानी और जिस शख्स ने दूसरे से कहा ए जीना करने वाले ए जीनाकार फकाल तो दूसरे ने कहा ला बल अंता नहीं बल्कि तू है फ इन नहुमा युहद्दानी तो इन दोनों को हद लगाई जाएगी लिअन्नमा नाहू भाई दूसरे ने तो कोई जीना का इल्जाम नहीं लगाया उसने तो सिर्फ कहा है ला बल अंता यहां तो जीना का लफ्ज ही नहीं है। कहते हैं भाई यहां बल का लफ्ज लेकर आया है और बल जो आता है वो गलती की तलाफी के लिए आता है। मसलन आप कहना चाहते थे मेरे पास अमर आया लेकिन जुबान पर गलती से जैद आ गया जा अनी जैदुन और आप कहना क्या चाहते थे अमर आया है तो आप फौरन बल के जरिए तलाफी करेंगे जा अनी जैदुन बल अमरुन बल अमरुन ये बल किस लिए आया गलती की तलाफी के लिए आता है ये भाई। तो लिहाजा यहां पर भी ला बल अंता इसने बल जिक्र किया है और बल गलती की तलाफी के लिए आता है कहना ये चाहता है कि नहीं मैं जानी नहीं हूं बल्कि तू है तवज्जो है और खबर यहां पर नहीं है खबर यहां पर नहीं तो जवाब यह कि खबर जब साथ जिक्र ना हो तो फिर इस सूरत में जो अव्वल के लिए खबर जिक्र होती है वही यहां मजकूर मान ली जाती है वही यहां पर मजकूर मान ली जाती है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन जाराबा बल आमरुन जैदुन जाराबा बल आमरुन जैद ने पिटाई की बल्कि अमर ने अब अमर के आगे मैं खबर तो नहीं लाया लेकिन माकबल में खबर गुजर गई थी तो उसी पर मैंने इक्तफा कर लिया तो आगे गोया अमर की खबर भी यही जराबा है भाई। बात समझ में आ गई तो कहते हैं ली अन्ना माना हु ला बल अंतजानिन कहते हैं इसलिए क्योंकि इस दूसरे के कौल का माना यह है ला बल अंतजानिन नहीं बल्कि तू जिनाकार है इस य कलिमत अतफिन इसलिए क्योंकि बल जो है यह कलिमा अतफ है युस्तद रकु भी हल गलत इसके जरिए तलाफी की जाती है गलती की फयसीर उल खबर उल मजकूर फिल अव्वली तो वो खबर जो अव्वल के अंदर मजकूर हुई थी मजकूर अनफिस सानी वही सानी में भी मजकूर होगी जो पहले कलाम में खबर मजकूर थी वही सानी के अंदर भी मजकूर होगी। बात समझ में आ रही है इस पर इश्काल होता है कि यहां तो खबर है ही नहीं या जानी ये तो निदा है ये तो निदा है तो जवाब ये कि ये सूरतन निदा है लेकिन हकीकत में ये भी खबर है हकीकत में ये भी खबर है निदा में भी गोया दूसरे पर वो जिना का इल्जाम लगा रहा है और यूं कह रहा है कि अंतजानिन तू जानी है अदऊ का व अंतजानिन मैं तुझे पुकार रहा हूं इस हाल में कि तू जिनाकार है तो यहां निदा के अंदर उसने एक सिफत जिक्र की है मालूम है वो इस सिफत की खबर दे रहा है भाई तो यह खबर के दर्जे में है या यूं कहो यह जिमनन खबर है लफजन तो खबर नहीं लेकिन जिमनन यह खबर ही के दर्जे में है तो वही खबर सानिम के अंदर भी मजकूर मान ली जाएगी। तो यह माना है फिर तर्जमा देख लीजिए कहते हैं इद ही कलिमत अतफिन इसलिए क्योंकि बल जो है ऐसा कलिमा अतफ है युस्तद रकु भी हल गलत इसके जरिए गलती की तलाफी की जाती है फयसीर उल खबर उल मजकूर फिल अव्वली तो वो खबर जो अव्वल के अंदर मजकूर थी मजकूर अनफिस सानी वो सानी के अंदर भी मजकूर होगी। वमन काल अली मरअतिहि या जानियतु फकालत ला बल अंत हुद्दतिल मरअतु वला लिआना भाई आप पढ़ चुके हैं कि खावन अगर अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाए तो फिर इस सूरत में वहां लिआन आता है वहां لعان آتا ہے اور لعان آپ نے پڑھا تھا کہ وہ شہادتوں کا نام ہے جس قسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا خاون نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور بیوی پھر خاون کو قاضی کے پاس لے گئی تو قاضی ان دونوں میں لعان کروائے گا. اور پہلے چار مرتبہ خاون گواہی دے گا قسم کے ساتھ کہ قاضی صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں. پھر دوبارہ کہے گا, چار مرتبہ یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں. اور پانچویں مرتبہ میں کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی. اور پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ یہی شہادتیں دے گی اور وہ کہے گی کہ قاضی صاحب میں شہادت دیتی ہوں کہ واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں یہ آدمی جھوٹا ہے. اور پھر چار مرتبہ یہ کہے گی اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو گئی. اور پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا, قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا. اور اس میں یاد رکھو بعض اوقات بچے کے نسب کے سلسلے میں بھی لعان کیا جاتا ہے. مثلا خاوند اپنے سے بچے کے نسب کی نفی کرنا چاہتا ہے لیکن میں نے بتایا تھا یہ پیدائش کے ابتدائی دنوں میں, اسی وقت وہ بچے کے نسب کی نفی کر سکتا ہے. تو لہذا بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں خاوند نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی عورت اس کو قاضی کے پاس لے جا کر لعان کروا سکتی ہے بھائی. اور جب دونوں لعان کر لیں گے تو پھر قاضی بچے کا نسب باپ سے کاٹ کر صرف عورت کے ساتھ جوڑ دے گا. اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا, اس آدمی کا بچہ شمار نہیں ہوگا بھائی. اور اگر پیدائش کے ابتدائی دنوں میں خاوند نے نسب کی نفی نہیں کی لیکن بعد میں کچھ مدت کے بعد پھر خاوند جو ہے اس بچے کے نسب کی نفی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوگی. البتہ عورت لعان کر سکتی ہے, عورت لعان کر سکتی ہے لیکن بچہ اسی خاوند کا شمار ہوگا بھائی. تو لعان جو ہے صراحتاً زنا کا الزام لگانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور بچے کے نسب کی جب نفی کی جائے تو یہ بھی در حقیقت زنا ہی کا الزام ہے تو اس صورت میں بھی لعان ہو سکتا ہے بھائی. اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو لعان ہے یہ خاوند کے لیے حد قذف کے درجے میں ہے اور بیوی کے لیے یہ حد زنا کے درجے میں ہے بھائی. اگر یہ لعان نہ ہوتا تو خاوند پر حد قذف آنی تھی کہ اس نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے. تو یہ لعان خاوند کے لیے حد قذف کے درجے میں ہے اور بیوی کے لیے یہ حد زنا کے درجے میں ہے. بیوی کے لیے حد زنا کے درجے میں ہے بھائی. اب صورت یہ کہ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا یا زانیہ, اے زناکار عورت, اور اس نے جواب میں کہا لا بل انتا, نہیں بلکہ تم ہو. تو بھائی پچھلے مسئلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اجنبی کسی اجنبی سے اس طرح کہے تو دونوں پر حد آتی ہے, لیکن خاوند اور بیوی کے مسئلے میں یاد رکھو صرف عورت پر حد آئے گی, عورت پر حد آئے گی اور لعان بھی نہیں ہوگا. وجہ یہ کہ یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں, لعان بھی آ رہا ہے اور عورت پر حد بھی آ رہی ہے. لعان کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ خاوند نے زنا کی تہمت لگائی ہے بیوی پر اور اس صورت میں لعان ہوتا ہے. اور حد قذف عورت پر آ رہی ہے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے لا بل انتا, اے لا بل انتا زانین, کہ تو زناکار ہے. تو عورت پر حد قذف بھی آ رہی ہے, تو لعان بھی آ رہا ہے اور حد قذف بھی. اور یہ لعان جو ہے یہ بھی حد کے معنی میں ہی ہے کیونکہ میں نے ابھی بتایا یہ لعان مرد کے لیے حد قذف کے درجے میں اور عورت کے لیے حد زنا کے درجے میں, تو لعان بھی حد کے درجے میں ہے. اور یاد رکھو ضابطہ ہے, ضابطہ ہے اگر کسی مقام پر دو حدیں جمع ہو جائیں اور ایک حد کو مقدم کرنے سے دوسری حد ساقط ہو جاتی ہے تو پھر اس حد کو مقدم کریں گے جس کی وجہ سے دوسری حد ساقط ہو رہی ہے. اگر کسی مقام پر دو حدیں جمع ہو جائیں اور ایک حد کو مقدم کریں تو دوسری ساقط ہو جاتی ہے, تو پھر اس حد کو مقدم کریں گے تاکہ دوسری حد ساقط ہو جائے. اس لیے کیونکہ حدود کو ساقط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, توجہ ہے؟ تو لہذا یہاں پر توجہ سے سنو, اگر ہم پہلے لعان کروا دیں تو لعان کے بعد بھی عورت پر حد قذف آئے گی. تو لعان بھی حد کے معنی میں وہ بھی آ گیا اور پھر عورت پر حد قذف بھی آئے گی. لیکن اگر ہم عورت پر حد قذف پہلے لگوا دیں تو پھر لعان ساقط ہو جائے گا. بھئی کس طرح ساقط ہوگا؟ کہتے ہیں دیکھو عورت پر جب حد قذف لگ گئی
और हद कजफ वाले के बारे में अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, वला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, कि इनकी गवाही भी कभी कबूल ना करो। तो लिहाजा अब औरत अहले शहादत ना रही, और जब वो अहले शहादत ना रही तो अब वो लियान नहीं कर सकती, क्योंकि लियान तो शहादतों का नाम था, तो लिहाजा लियान साकित हो जाएगा। तो लिहाजा यहां औरत पर हद कजफ को मुकदम कर दिया जाए तो लियान साकित हो जाता है, तो लिहाजा इसलिए इस हद कजफ को मुकदम कर दिया जाएगा। देखिए भाई कहते हैं, वमन काल अल इमराती ही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा या जानिया तू ए जिनाकार, फकालत ला बल अंता, तो औरत ने कहा नहीं बल्कि तू है, हुद्दत अल मरअतु, तो औरत को हद लगाई जाएगी, वला लियान, और लियान नहीं होगा, लिअन्नहुमा काज़िफानी, इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को तोहमत लगा रहे हैं। खावन ने कहा या जानिया, तो खावन ने भी जिना की तोहमत लगाई, और औरत ने भी ला बल अंता कहकर खावंद पर जिना की तोहमत लगाई। तो कहते हैं लिअन्नहुमा काज़िफानी, इसलिए क्योंकि खावंद और बीवी दोनों तोहमत लगा रहे हैं, वक़्ज़्फुहु युजिबुल लियाना, और खावंद की तोहमत जो है वो लियान को वाजिब करती है, वक़्ज़्फुहल हद्दा, और औरत की तोहमत जो है वो हद को वाजिब करती है कि उस औरत को हद कज़फ लगाई जाए, वफिल बिदायति बिल हद्दी, और हद के जरिए इब्तिदा करने में इब्तालुल लियानी, लियान को बातिल करना है, लिअन्न अल महदूद फिल कज़्फ लैस बी अहलिन लहू, इसलिए क्योंकि महदूद फिल कज़्फ जो होता है लैस बी अहलिन लहू, वो लियान का अहल नहीं होता, क्योंकि लियान तो शहादतों का नाम है और महदूद फिल कज़्फ वो तो अहले शहादत ही नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल महदूद फिल कज़्फ लैस बी अहलिन लहू, और महदूद फिल कज़्फ जो है वो लियान का अहल नहीं होता, वला इब्ताल फी अक्सिही असला, और इसके बराक सूरत में कोई इब्ताल नहीं है, अगर लियान पहले कर दें तो फिर भी हद कज़्फ साकित नहीं होगी, वो फिर भी लगेगी, तो लियान को मुकदम किया जाए तो हद कज़्फ तो बातिल नहीं होती भाई। तो कहते हैं वला इब्ताल फी अक्सिही असला, और इसकी बराक सूरत में बातिल करना नहीं है, असलन ऐ कतअन, फयुहतालु लिद्दरई, लिहाजा हीला किया जाएगा लियान को दूर करने के लिए, इज़ लियान फी मानल हद, इसलिए क्योंकि लियान भी हद के माना में है, वलौ कालत ज़नैतु बिका फला हद वला लियाना, भाई खावन ने बीवी से कहा या ज़ानियतु ए ज़िनाकार, औरत ने जवाब में कहा जनई तू बिका, तुम्हारे साथ मैंने जिना किया है जी। तो फिर कहते हैं इस सूरत में न औरत पर हद आएगी और न लियान आएगा भाई। क्यों हद क्यों नहीं आएगी और लियान क्यों नहीं आएगा? कहते हैं वजह यह कि यहां शुबा आ गया, क्योंकि औरत ने जवाब में क्या कहा है जनई तू बिका, इसका एक माना यह हो सकता है कि हां मैंने तुझसे ही जिना किया था निकाह से पहले, और इसका यह माना भी हो सकता है कि तुमने मेरे साथ की जो हलाल वती की है अगर उसी को जिना कहते हो तो वो तो मैंने तुम्हारे साथ किया है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर किसी और को कुदरत नहीं दी। तवज्जो है, खावन ने बीवी से क्या कहा या जानिया तू ए जिनाकार, और जवाब में औरत कहती है जनई तू बिका, मैंने तुम्हारे साथ जिना किया है। तो इस सूरत के अंदर इस कलाम में दो एहतमाल आ गए, या तो इसका माना यह है कि हां वाकई मैंने तुम्हारे साथ निकाह से पहले जिना किया था, या इसका माना यह है कि तुम मेरे साथ ये जो हलाल वती करते हो अगर इसको तुम जिना शुमार करते हो तो मैंने तो यही जिना किया है, तुम्हारे अलावा तो मैंने किसी को अपने ऊपर कुदरत नहीं दी। और उमूमन इसी माना का इरादा किया जाता है, खावन जब बीवी को कहे जिनाकार और वो क्या कहे मैंने तुम्हारे साथ जिना किया है, तो उसका यही मतलब होता है कि मैंने तो और किसी को अपने ऊपर कुदरत नहीं दी, यही हलाल वती जो तुम मेरे साथ करते हो अगर ये तुम्हारे ख्याल में जिना है तो मैंने यही जिना किया है भाई। बात समझ में आ गए? तो यहां दोनों माना का इहतमाल आ गया, लिहाजा अगर पहला इहतमाल हम लें कि औरत इकरार कर रही है कि हां निकाह से पहले मैंने तुम्हारे साथ जिना किया था, तो फिर इस सूरत के अंदर खावन ने क्या कहा तू जिनाकार है, बीवी ने क्या कर दी जिना की खावन की तस्दीक कर दी, तो लियान नहीं आएगा जी। तो फिर इस सूरत में लियान नहीं आएगा, क्योंकि लियान के अंदर तो खावन और बीवी एक दूसरे को झुटलाते हैं, खावन कहते हैं ये जिनाकार है, बीवी कहती है कि मैं जिनाकार नहीं हूं, और यहां वो तस्लीम कर रही है, लिहाजा लियान नहीं आएगा। हां अलबत्ता औरत पर हद कजफ आ जाएगी, इसलिए क्योंकि वह खावन पर जिना का इल्जाम लगा रही है, खावंद ने जो इस पर जिना का इल्जाम लगाया था वो इल्जाम ना रहा, औरत ने उसकी तस्दीक कर दी, लेकिन औरत ने जवाब में खावंद पर जिना का इल्जाम लगा दिया है और खावंद ने तो उसकी तस्दीक नहीं कि जब तस्दीक नहीं की तो औरत का इल्जाम इल्जाम ही है, लिहाजा यह तकाजा कर रहा है औरत को हद कजफ लगनी चाहिए। तवज्जो है, अगर हम पहले माना का इरादा करें कि औरत के कहने का मतलब यह है कि निकाह से पहले मैंने तुम्हारे साथ जिना किया था, तो फिर लियान तो साकित हो गया, क्योंकि लियान में तो दोनों एक दूसरे की तकजीब करते हैं, एक दूसरे को झुटलाते हैं। खावन कहते हैं इसने जिना किया है, बीवी कहती है मैंने नहीं किया, दोनों एक दूसरे को झुटला रहे होते हैं, लेकिन यहां तो बीवी ने तस्दीक कर दी कि मैंने तुम्हारे साथ जिना किया है, तो लिहाजा लियान तो साकित हुआ। अलबत्ता औरत पर हद कज़फ आनी चाहिए, खावन पर नहीं, क्योंकि खावन ने क्या कहा था, तू जिनाकार है, बीवी ने क्या कर लिया, तस्लीम कर लिया कि इल्जाम नहीं है, यह हकीकत है, मैं वाकई क्या हूं, जिनाकार हूं, लेकिन किसके साथ जिना किया है, तुम्हारे साथ, मालूमत खावन पर उसने जिना का इल्जाम लगा दिया है और खावन ने तो इस इल्जाम की तस्दीक नहीं की, लिहाजा यह तकाजा कर रहा है औरत पर हद कज़फ आनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरा माना लिया जाए कि औरत यह कहना चाहती है कि ये जो तुम मेरे साथ हलाल वती करते हो, इसको अगर तुम जिना कहते हो तो ये जिना है, क्योंकि इसके अलावा तो मैंने और किसी को अपने ऊपर कुदरत नहीं दी, तो इस सूरत के अंदर लियान वाजिब होता है, इस सूरत में लियान वाजिब होता है, क्योंकि खावन ने जिना का इल्जाम लगाया है और औरत ने कोई तस्दीक नहीं की उसकी, तवज्जो है, तो इस सूरत में लियान वाजिब होता है जी। और पहली सूरत में औरत पर हद कजफ वाजिब होती है, तो अब शक आ गया, शुभ आ गया कि औरत ने पता नहीं किस माना का इरादा किया है, अगर पहले माना का इरादा किया है तो औरत को हद कजफ लगनी चाहिए, अगर दूसरे माना का इरादा किया है तो फिर लियान होना चाहिए, तो शुबे की वजह से ना हद आ सकती है और ना लियान, क्योंकि हुदूद शुबे की वजह से साकित हो जाया करती हैं और लियान भी हद के माना में है भाई, बात समझ में आ गई। देखिए कहते हैं वलौ कालत ज़नाई तू बिका, और अगर उस औरत ने जवाब में कहा ज़नाई तू बिका मैंने तुझसे जिना किया है, फला हद वला लियाना, तो फिर ना हद होगी और ना लियान होगा। व मानाहु, साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं, मतन में तो सिर्फ आया वलौ कालत ज़नाई तू बिका, अगर औरत कहे मैंने तुझसे जिना किया है, साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि ये खावंद के उसी कौल के जवाब में औरत ने कहा है, वो जो खावंद ने क्या कहा था या जानिया तू, उसके जवाब में औरत कहती है जनाई तू भी का, तो कहते हैं मानाहू, इस कौल का माना ये है काल अदबाद अमा काल अलहा या जानिया तू, कि औरत ने ये कहा है बाद उसके जब उस खावंद ने इसे कहा था ए जानिया। अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि हद और लियान क्यों नहीं आएगा, कहते हैं लिवको शक की फी कुल वाहिद मिन्हुमा, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक के अंदर शक आ गया, लियान में भी और हद के अंदर भी शक आ गया। ले अन्नहु यहतमिलु, इसलिए क्योंकि ये कलाम ये इहतमाल भी रखता है कि अन्नहा अरादत जिना कबल निकाह, कि औरत ने उस जिना का इरादा किया है जो निकाह से पहले था। फयजिबुल हद्दु, तो इस सूरत में औरत पर हद आएगी, कौन सी हद, हदे कजफ, हदे कजफ, तो उस औरत पर हद कजफ आएगी। दून लियान, न के लियान, भाई ये इकरार कर रही है और आप कह रहे हैं हद कजफ आएगी, यहां तो हद जिना आनी चाहिए। जवाब ये कि हद जिना में चार इकरार जरूरी हैं, चार अलग अलग मजलिसों में, तो यहां हद कजफ आ रही है, हद जिना नहीं। तो कहते हैं कि उसने निकाह से पहले जिना का इरादा किया है, फयजिबुल हद, तो इस सूरत में हद कजफ वाजिब होगी। दून लियानी, ना के लियान, ली तस्दीक हा इयाहु, बवजह औरत के खावंद की तस्दीक करने के, कि औरत क्या कर रही है, खावंद की तस्दीक कर रही है कि हां मैंने जिना किया है और तुम्हारे साथ किया है। वन ईदाम ही मीन हूं, और यह तस्दीक खावंद की तरफ से तो मादूम है, खावंद ने तो तस्दीक नहीं की कि मैंने जिना किया है, तो खावंद पर गोया यह इल्जाम लगा रही है। तो कहते हैं फयजिबुल हद्दु दून लियानी, तो हद कजफ वाजिब होगी ना के लियान, लि तस्दीक हा इयाहु व इदाम ही मिनहु, इसलिए क्योंकि बीवी ने तो खावंद की तस्दीक की है और खावंद ने बीवी की तस्दीक नहीं की है। वह यहतमिलु अन्नहा अरादत, और यह भी इहतमाल है कि औरत ने यह इरादा किया हो कि जिना या मा कान माअक बाद निकाह, कि जिना या मेरा जिना जो है मा वो है कान माअक बाद निकाह, जो तुम्हारे साथ था निकाह के बाद, मेरा जिना तो वो है जो तुम्हारे साथ था निकाह के बाद। जिना या मा का न मा का बादा निकाह, याद रखो जिना या ये है मुब्तदा और मा का न मा का बादा निकाह, ये मा क्या है, खबर है।
तो जीना या मेरा जीना जो है मा काना मा का बाद निकाही वो है जो तुम्हारे साथ था निकाह के बाद। लिअन्नी मा मक्कन तु अहदन गैरका इसलिए क्योंकि मैंने तो तुम्हारे अलावा किसी और को कुदरत नहीं दी अपने ऊपर। वह हुवल मुराद फी मिसली हाजिहिल हालती और यही मुराद होता है इस जैसी हालत में, यही दूसरा माना ही अमूमन मुराद होता है। वाला हादल एतबारी यजिबुल लियानू और इस एतबार से तो लियान वाजिब होता है। दून अल हद अल मरअती न के औरत पर हद, इस सूरत में तो लियान वाजिब होता है न के औरत पर हद। लिवजूद अल कज़्फ़ मिन्हु व अदमी ही मिन्हा इस वजह से कि खावंद की तरफ से तो तोहमत पाई जा रही है, व अदमी ही मिन्हा और औरत की तरफ से नहीं पाई जा रही। फजा अमा कुलना तो वो आ गया जो हमने कहा था, वो चीज आ गई जो हमने कही थी, यानी शक आ गया कि हद कज़्फ़ आएगी या लियान आएगा, क्योंकि कलाम के अंदर दोनों का इहतमाल है तो, और शक की वजह से दोनों में से एक भी नहीं आ सकता क्योंकि हुदूद जो है शुबे की वजह से साकित हो जाती हैं, तो हद कज़फ भी साकित हो गई और लियान जो है वो भी हद के माना में है, वो भी साकित हो गया। बात समझ में आ गई। तो यह माना है फजा अमा कुलना तो वो ही चीज आ गई जो हमने कही थी, यानी शक आ गया इन दोनों के अंदर। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस बेहादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।